You feel good. You're there. That's good.
अच्छा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये सदा मैं आनंदित था जब उन्होंने मुझसे कहा था कि आओ हम प्रभु के घर को चलें। मैं विश्वास करता हूं कि ये बात एक बार दाऊद ने कही कि आओ हम प्रभु के भवन को चलें। मैं इससे अच्छा स्थान कोई नहीं जानता। क्या आप प्रभु के भवन से अच्छा? अब आज रात्रि हम यहाँ हमारे कुछ मित्रगण जॉर्जिया से हैं। संभवतः वे यहाँ अपनी अपनी गाड़ियों से आए हैं आज रात्रि खाने के पश्चात, और तब हम उनमें से कुछ नीचे से, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग रुके हुए हैं और हमारे पास जो भी स्थान है वो आपके लिए खुला है। और तब बुधवार रात्रि को हम उस अध्ययन को जारी रखेंगे, और तब प्रभु ने चाहा फिर से अगले रविवार को, और तब चटुकुआ में छठवीं से आरंभ है। इसलिए सब जिन्होंने अपनी छुट्टियों की योजना बना ली है, हम एक बड़े महान समय की आशा कर रहे हैं चटुकुआ में, यही जहां हमारा एक शानदार समय हमेशा होता है। बहुत बड़ी भीड़ नहीं, कभी कभी हम भागते हैं, ये लगभग इसे थामे रहेगा। मैं समझता हूं हम इसमें 10,000 आसानी से समा सकते हैं, परंतु अधिकतर पिछले वर्ष मैं सोचता हूँ हमारे पास लगभग 7,000 थे, कुछ इतने ही। खचाखच भरा हुआ था, परंतु खड़े होने के लिए बहुत स्थान था और बैठने के सारे स्थान समाप्त हो चुके थे, और इसलिए हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हम यहाँ बहुत सारे सेवक भाइयों को देखकर प्रसन्न हैं। मुझे यहाँ उनका नाम याद नहीं आ रहा है, मिशनरी भाई ह्यूम्स और बहन ह्यूम, क्या आप यहाँ बैठी हैं? और छोटे बच्चे, उन्हें यहाँ पाकर हमें प्रसन्नता है। एक मिशनरी, दूसरे वाले भाई पैट, भाई डॉल्टन, और वो बहुत सारे भाई बीलर, और थोड़ी देर पहले भाई कॉलिंस को देखा था, और एक प्रकार से सबका नाम लेना कठिन होगा, परंतु आज रात्रि हम आपको प्रभु के भवन में पाकर आनंदित हैं। ये मूल्यवान भाई नेविल यहाँ मेरे पीछे मेरे साथ प्रार्थना के लिए बैठे हैं, जबकि हम वचन सिखाने जा रहे हैं। चार्ली, तुम्हें और बहन नेली को यहाँ आज रात्रि देखकर प्रसन्नता है, बच्चे भी। ये और बाइबल की शिक्षा अक्सर, हाँ भाई बेल, मैं बस आपको ढूंढ रहा था, मैं अब आपको वहाँ पीछे बैठे हुए देख रहा हूँ। बाइबल की शिक्षा देना अधिकांश थोड़ा जोखिम भरा होता है, हम ये कहते हैं थोड़ा जानना एक प्रकार से खतरे में चलना होता है, परंतु हम अनुभव करते हैं जो कि हो सकता है, जो कि इस समय इस बिंदु पर कि कलीसिया को, जो मैं सोचता हूँ, एक प्रकार से ऐसे स्थान पर लाना कि स्थिति की पूरी समझ हो कि हम मसीह यीशु में क्या हैं। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि प्रचार बहुत अच्छी चीज है, परंतु भाई बीलर, कभी कभी शिक्षा उससे आगे बढ़ जाती है, ये अनुकूल विशेषकर कलीसिया के लिए। अब प्रचार अधिकांश पापी को पकड़ता है, वचन के द्वारा उसको दोषी ठहराता है, परंतु शिक्षा विशेष मनुष्य को कि वो क्या है सही स्थिति में रखता है। और हम कभी भी सही विश्वास नहीं कर सकने के योग्य होते हैं जब तक हमें न मालूम हो कि हमारा सही स्थान क्या है। अब यदि संयुक्त राज्य, जो स्पष्ट राष्ट्र है, मुझे इस राष्ट्र का राजदूत बनाकर रूस को भेज दें, रूस के लिए, तब यदि वे मुझे वैधानिक रूप में रूस भेजते हैं, तो संयुक्त राज्य की सारी शक्ति मेरे समर्थन में है। मेरे शब्द संयुक्त राज्य के जैसे होंगे यदि मुझे एक राजदूत के समान मान्यता दी गई है। और तब यदि परमेश्वर ने हमें अपना राजदूत होने के लिए भेजा है, सारी सामर्थ जो स्वर्ग में है, वो सब जो परमेश्वर है, उसके सारे स्वर्गदूत, सारी उसकी सामर्थ हमारे वचनों के पक्ष में है। यदि हम सही प्रकार से अभिषिक्त लोगों के पास संदेशवाहक भेजे गए हैं, परमेश्वर वचन को आदर देगा ही। क्योंकि उसने दृढ़ता पूर्वक लिखा है कि तुम जो कुछ भी पृथ्वी पर बांधोगे वो मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो मैं स्वर्ग में खोलूंगा, और तुम्हें राज्य की कुंजियां दूंगा। ओ ये कितनी महान प्रतिज्ञा है जो उसने कलीसिया को दी है। और मैं उस दिन के बाद से, यदि आप में से बहुत सारे, मैं समझता हूँ, यहाँ इस प्रातः सुन रहे हैं, जैसा कि मैंने अपनी नम्र सेवकाई में यत्न किया है, साधारण रीति से बताया है वो दर्शन जो मैंने स्वर्ग का देखा। मैं किसी भी रीति से कभी भी उसमें किसी भी बात का संदेह नहीं करूँगा जो कभी भी मुझे किसी ने बताई कि उन्हें परमेश्वर ने बताया है। यदि मैं इसे पवित्र वचन में भी ना देखूं, तो भी मैं इसका विश्वास करूंगा। मैं अब भी विश्वास करना चाहूंगा उस भाई के वचन का। मैं केवल बाइबल के साथ बना रह सकता हूं, परंतु अब भी मैं विश्वास करूंगा कि संभव है कि भाई किसी प्रकार से गलत समझ गया होगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया होगा, और फिर भी मैं विश्वास करूंगा कि वो मेरा भाई है। और यदि मेरे हृदय में कुछ उत्तेजना है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों में ये नहीं छूटेगी, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। पिछले रविवार प्रातः क्या हुआ था, जैसा कि एक सप्ताह, इसने मुझसे कुछ किया, इसने मेरे जीवन को क्रांतिकारी कर दिया। मैं डरता नहीं, मुझे मृत्यु का तनिक भी भय नहीं, मृत्यु में बिल्कुल भी भय नहीं है। और ये आपके लिए नहीं है, यदि आप समझ गए हैं तो। अब संभव है यदि इसे जानने के लिए आपके पास अनुभव होना ही चाहिए, क्योंकि इसे समझाने की कोई विधि नहीं है। अब शब्द नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये अंग्रेजी शब्दकोश में नहीं है या किसी और शब्दकोश में, क्योंकि ये एक अनंतता है। कोई बीता कल नहीं, कोई आने वाला कल नहीं, ये सारा वर्तमान काल है, और इसमें नहीं है मुझे अच्छा अनुभव होता है और अब से एक घंटे के बाद मैं अच्छा अनुभव नहीं करता हूँ और अगले घंटे में फिर अच्छा अनुभव करता हूँ। सारे समय ये वर्तमान काल है, समझे, कभी नहीं रुकता, केवल वो शानदार शांति और कुछ। और वहाँ पाप नहीं हो सकता, वहाँ द्वेष नहीं हो सकता, वहाँ बीमारी नहीं हो सकती, वहाँ उस स्वर्ग के किनारे पर कुछ नहीं पहुँच सकता। और यदि मुझे ये कहने का सौभाग्य है, जो कि हो सकता है मेरे पास नहीं है, यदि मेरे पास नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे। परंतु यदि ये मेरे पास है और ये परमेश्वर ने मुझे कुछ दिखाने के लिए उठा लिया, मैं पहले स्वर्गों का उल्लेख करूंगा। तब मैं बाइबल में विश्वास करता हूँ कि पौलुस नाम का, मैं विश्वास करता हूँ, जो कि तीसरे स्वर्ग में उठाया गया। और अब यदि ये पहला स्वर्ग महिमामय था, तो फिर वो तीसरा स्वर्ग उसमें क्या होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वो 14 वर्षों तक नहीं बोल सका। उसने कहा वो नहीं जान पाया कि वो शरीर में था या शरीर से बाहर था, उस महान चेले के साथ कार्यस्थल मिलाने के लिए नहीं, या स्वयं को कुछ बनाने का यत्न करने के लिए जैसा कि वो था, परंतु मैं उसके साथ कह सकता हूँ, मैं नहीं जानता कि इस शरीर में या इस शरीर से बाहर। केवल एक बात, ये उतना ही वास्तविक था जैसा कि मैं आपको देख रहा हूँ। और इस विषय में मैं सदा अचरज में था, यदि मैं मर गया तो मैं एक छोटा बादल तैरता हुआ देखूंगा, एक आत्मा, और कहता वो भाई बहन जा रहे हैं, वे चार्ली और नेली हैं, वहाँ भाई और बहन स्पेंसर जा रहे हैं। ये मेरे लिए सदा रहस्यमय था। यदि मेरी आंखें कब्र में हैं और क्षतिग्रस्त और सड़ रही हैं, यदि मेरे कान यहाँ पर नहीं हैं और कुछ और सुन सकूं, और यदि मेरा लहू सारा वापस जा चुका है और उन्होंने उसे सुगंधित कर दिया है, और ये पानी में या जमीन में है, और मेरी मस्तिष्क की क्षमताएं, मेरे मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं मर गई हैं, तब मैं सिवाय इधर उधर तैरती हुई आत्माओं को छोड़ और क्या होऊंगा? और इसने मुझे उबाऊ कर दिया। मैं कैसे कहना चाहूंगा, हेलो भाई पैट, ओ आपको देखकर प्रसन्नता हुई, हेलो भाई नेविल, मैं आपको कैसे देखूंगा? परंतु मैंने सोचा, जब मेरे पास देखने के लिए कुछ नहीं होगा, बोलने के लिए कोई मुंह नहीं होगा, ये तो मिट्टी है, सड़ गया, मैं कैसे कहने योग्य होऊंगा, हेलो भाई पैट, भाई नेविल या आदि आदि, अरे चार्ली? परंतु अब मैं जानता हूँ कि ये गलत है, क्योंकि ये वचन में लिखा है, जो कि मैं कहता हूँ भिन्न नहीं है, क्योंकि यदि ये मिट्टी का घर गिराया गया तो हमारे पास एक और है जो प्रतीक्षा में है, दूसरा घर जिसमें आंखें, कान, होंठ, मस्तिष्क, क्षमता है। यदि ये पृथ्वी का डेरा गिराया गया, इसकी एक देह है जो मैं अनुभव कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। और अब ये मेरी समझ में आता है कि अभी अभी कि मूसा मर गया उस ना मिलने वाली कब्र में 800 वर्षों के लिए, और एलिशा 500 वर्ष पहले स्वर्ग को चला गया, परंतु रूपांतरण वाले पर्वत पर उन लोगों को यीशु से बातें करते हुए देखा गया। सैमुएल के मरने के 4-5 वर्ष पश्चात, और इंदौर की जादूगरनी ने उसे ऊपर बुलाया, और वो मुंह के बल गिरी, और उसने कहा, तूने मुझे धोखा दिया क्योंकि तू स्वयं शाऊल है। उसने कहा, क्योंकि मैं देवता को देखती हूँ, वो मूर्ति पूजक थी, आप समझे, मैं देवताओं को ऊपर आते देखती हूँ। और तब भी शाऊल उसे ना देख सका, और उसने कहा, वो कैसा दिख पड़ता है, मुझसे वर्णन कर, कहा वो दुबला है और उसके कांधे पर कपड़ा है, कहा ये सैमुएल है भविष्यद्वक्ता, उसे मेरे समक्ष ला। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें कि सैमुएल के व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया, वो अब भी भविष्यद्वक्ता था। उसने शाऊल को ठीक ठीक बताया कि अगले दिन क्या होगा। इसलिए आप देखिए, मृत्यु हमारा पूर्णतः हास नहीं करती, जैसे कि हम कब्र पर रोते और विलाप और शोक करते हैं, ये केवल हमारे रहने का स्थान बदलती है, ये हमें एक स्थान से लेकर, आयु क्या है, यदि मैं एक और घंटा जी लूं, तो मैं बहुत से 16 वर्षीय लोगों से अधिक जीऊंगा, मैं बहुत से 5 वर्षीय लोगों से अधिक जीवित रहूंगा, आयु कुछ नहीं है, हम यहाँ पर किसी उद्देश्य के लिए हैं कि कुछ करें। अब यहाँ पर बहुत सी सुंदर चेहरे वाली माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, कुछ उनमें से 60 या 70 वर्ष की हैं, कहेंगी, अच्छा तो भाई ब्रणम, मैंने क्या किया है, आपने अपने बालकों का पालन पोषण किया है, आपको जो करना चाहिए था वो आपने किया। संभव है कोई बूढ़े पिता यहाँ पर बैठे हुए कहें, भाई मैंने तो खेत जोते हैं, मैंने ये किया है, मैंने कभी प्रचार नहीं किया, परंतु आपने वो किया जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए भेजा, आपके लिए एक स्थान है। कल मैं एक बूढ़े डॉक्टर से बातें कर रहा था, मेरे मित्रों में से एक डॉक्टर मित्र प्रियजन 80 कुछ वर्षों का है, और उसकी साली आज रात्रि यहाँ आराधनालय में है, और वो उसके लिए थोड़ी सी चिंतित है, और मैं उसे देखने गया, और जैसे ही मैं उससे बातें करने लगा, उसने प्रसन्न होकर मुझे शिकार का किस्सा बताया, जो कि बहुत वर्षों पहले कोलोराडो में हुआ था, वहीं जहाँ मैं शिकार करता हूँ, वैसे ही होशियार और प्रसन्न। और मैंने कहा, डॉक्टर आप कितने दिनों से इलाज कर रहे हैं? उसने कहा, जब तुम दूध पीते बच्चे थे। और मैंने कहा, और बहुत सी बार उसने कहा, मैंने अपनी बग्गी लेकर लोगों को इलाज करने को गया, मैंने घोड़े पर काठी कसी, मैंने छोटा बस्ता लिया और मैं पैदल गया और मैंने कहा हाँ, वहाँ प्रातः 2 बजे खाड़ी के किनारे किनारे अपनी टॉर्च के साथ उस घर को ढूंढने का यत्न किया जहाँ छोटे लड़के के पेट में दर्द या माँ एक जच्चा की पीड़ा में। कहा हाँ ये ठीक है। और मैंने कहा डॉक्टर आप जानते हैं मैं विश्वास करता हूँ कि इस विभाजन रेखा के पार यहाँ मरण और अमरता के बीच में परमेश्वर के पास एक अच्छे पुराने डॉक्टरों के लिए स्थान था जो इस प्रकार की सेवा करें। मोटे मोटे आंसू उसकी आंखों में आ गए और वो रोने लगा। उसने अपने दुर्बल हाथों को उठाया और कहा भाई मैं ऐसी आशा करता हूँ। उस पार परमेश्वर मनुष्य के प्राण का न्याय करता है, वो क्या है? तब मैंने उसे ये संतुष्टि वाला वचन दिया, बहुत सी बार अंधेरी रात में गारे वाले खेत को जोतते हुए किसी की सहायता करने का यत्न करते हुए, हो सकता है उसके लिए कोई पैसा ना मिला हो, परंतु ये ठीक है। मैंने कहा यीशु ने वचनों में कहा है धन्य है जो दयावान है उन पर भी दया की जाएगी, और ये सत्य है। और आज रात्रि हम इन 3 पाठों में कलीसिया को स्थिर करना चाहते हैं। यदि परमेश्वर ने चाहा कैसे और क्या देखें कि हम क्या हैं? हम पौलुस की पत्री का पहला अध्याय देखने जा रहे हैं इफिसियों से, और हम अपने अगले 3 अध्ययनों में पहले 3 अध्याय लेने जा रहे हैं। एक सांझ में 1 अध्याय को लेने का यत्न करेंगे यदि ले सके तो। आज रात्रि बुधवार है और अगले रविवार प्रातः इफिसियों का 1 अध्याय। अब जबकि हम मिलकर अध्ययन करते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इफिसियों की ये पुस्तक सिद्ध रूप से पुराने नियम के यहोशू के समानांतर है। इफिसियों की पुस्तक, अब स्मरण रखें यदि हम इससे थोड़ा इधर उधर होने लगें आपको सिखाने में तो हमें क्षमा करना और थोड़ा सा सब्र करना। इसके पहले कि हम इसे खोलें हम उससे सहायता मांगें जैसे कि हम अपने सिरों को झुकाते हैं। प्रभु हम तेरे पवित्र और पूज्य बाइबल के पास आते हैं जो कि सारे स्वर्गों और पृथ्वी से अधिक सुरक्षित है, क्योंकि हम इस वचन में पढ़ते हैं जो कि बाइबल कहलाती है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। तब इस गंभीर घड़ी में मैं आज रात्रि इस प्रचार मंच पर और तेरे लहू से खरीदे हुओं के समक्ष आता हूँ। ये प्रिय अनमोल मरणहार जो आज रात्रि यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रत्येक छोटी आशा को थामे हुए है जो कि वे कर सकते हैं कि उस ज्योति को पकड़े रहें जो आने को है। होने पाए कि ये आज रात्रि इतनी पर्याप्त हो कि प्रत्येक विश्वासी अपनी स्थिति को देख सके। प्रत्येक जो अभी तक इस महान संगति में नहीं आ पाया है राज्य की ओर यत्न करेगा प्रभु, और द्वार को तब तक खटखटाएगा जब तक द्वारपाल द्वार न खोल दे। प्रभु इसे प्रदान करें। हम इसमें पढ़ रहे हैं जहाँ की इस बाइबल में कोई व्यक्तिगत अनुवाद नहीं है। परमेश्वर ना हो कि मैं आपका दास कि उनके अपने अनुवाद को वचन में मिलाने का यत्न करूं। हम इसे पढ़ें और इसका विश्वास करें जिस प्रकार की ये लिखा है, और विशेषकर हम झुंड के चरवाहे, हम पास्टर लोग जो कि किसी दिन उस महिमामय देश में एकत्र होंगे इस छोटे से झुंड के साथ, और हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में खड़े होंगे और पीढ़ियों को आते देखेंगे, पौलुस की, पतरस की और लूका की और मरकुस की और मती और वे सब और उनके झुंडों के साथ उनका न्याय होते देखेंगे। प्रभु इसे प्रदान करें। मैं आपके चरणों में लाखों परितोषक रख सकता हूँ, जबकि मैं नम्रता के साथ ऊपर चढ़ूंगा और अपने हाथों को आपके अनमोल चरणों पर रखूंगा और कहते हुए, प्रभु ये तेरे हैं। ओ परमेश्वर, हमें अपने आत्मा से फिर से भर दे और तेरे प्रेम से और तेरी धार्मिकता से, और होने पाए कि जैसा कवि ने अपने गीत में कई वर्षों पहले ये प्रकट किया, प्रिय मरने वाले मेमने, तेरा अनमोल लहू कभी अपनी सामर्थ ना खोएगा जब तक परमेश्वर की बची हुई कलीसिया पाप से ना बच जाए। और सदा से विश्वास के द्वारा मैंने तेरे घाव से निकलती हुई धारा देखी है। छुड़ाने वाला प्रेम मेरा विषय रहा है और जब तक ना मरूंगा यही रहेगा। तब उस एक महानतम मीठे गाने में वो आगे कहता है, मैं तेरी बचाने वाली सामर्थ को गाऊंगा जब ये बेचारी जुबान का तुतलाना और लड़खड़ाना कब्र में शांत हो जाता है। तब ये कब्र आपके बालकों के लिए मृत्यु को नहीं रखती, ये केवल एक विश्राम का स्थान है या एक छिप जाने का स्थान जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा। होने पाए प्रभु, आज रात्रि हम इसे स्पष्ट देख सकें जैसा कि ये हमें वचन में दिया गया है। हमें समझ दें और हमारे कर्तव्य के स्थान पर हमें स्थिर करें प्रभु, ताकि हम ईमानदारी के साथ जब तक आप नहीं आते हैं सेवा करें। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं और उसी के लिए आमीन। अब इफिसियों की पुस्तक, जैसे कि मैं अभी कह रहा था, मैं मेरे विचार से ये नए नियम की एक महानतम पुस्तक है। ये हमें वहाँ छोड़ती है जहाँ कॉल्विनवाद एक ओर समाप्त हो जाता है और दूसरी ओर आर्मेनियनवाद समाप्त हो जाता है, परंतु इफिसियों की पुस्तक इन्हें यथा स्थान पर लाती है, कलीसिया को उपयुक्त स्थान पर स्थिर करती है। अब मैंने इसका यहोशू के साथ वर्गीकरण किया है। यदि आपने ध्यान दिया हो, इसराइल मिस्र से बाहर लाया गया था और उसकी यात्रा के तीन चरण थे। पहला चरण मिस्र को छोड़ना था, अगला चरण जंगल में था और अगला चरण कनान था। अब कनान सहस्र शताब्दी के युग को नहीं दर्शाता, ये केवल जयवंत युग का प्रतिनिधित्व करता है। ये जयवंतों का विधान है, क्योंकि कनान में उन्होंने मारा, जलाया और नगरों को ले लिया, और सहस्र शताब्दी में कोई मृत्यु ना होगी। परंतु दूसरी बात जो ये कहता है, ये विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराने को ले जाता है, जब उन्होंने मूसा पर विश्वास कर लिया और मिस्र को छोड़ दिया। पवित्रीकरण, अग्नि स्तंभ के साये में चलना और जंगल में बलि किए गए मेमने का प्राश्चित, और तब उस देश में प्रवेश करना जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। अब नए नियम के विश्वासी को किस देश की प्रतिज्ञा दी गई है? प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा की है, क्योंकि योएल 2:28, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, मैं अपने दास और दासियों पर अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे, और मैं ऊपर आकाश में आश्चर्य चिन्ह दिखाऊंगा और पृथ्वी पर अग्नि और धुएं के स्तंभ और भाप। और पत्रस ने पेंतेकुस्त के दिन अपना विषय लेने और प्रचार के पश्चात कहा, तुम में से प्रत्येक प्रायश्चित करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले छुटकारे के लिए, वापसी के लिए, क्षमा के लिए, आपके सारे अपराधों से वापसी के लिए, इसके पहले कि वे यरदन को पार करते, क्या आपने ध्यान दिया यहोशू पर? यहोशू ने कहा, शिविर के मध्य में से निकलकर अपने वस्त्रों को शुद्ध करो और प्रत्येक स्वयं को पवित्र करें और कोई अपनी पत्नी के पास ना जाए, क्योंकि 3 दिन में तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। समझे, ये एक अपने जन्म के अधिकार की प्रतिज्ञा को पाने की विधि है। अब इज़राइल की प्रतिज्ञा ये थी जो परमेश्वर ने अब्राहम को फिलिस्तीन देश की प्रतिज्ञा दी थी कि वे इसके सदा सदा के लिए अधिकारी हो गए थे और इन्हें सदा इसी भूमि पर रहना था। अब वे 3 चरणों में आते हैं, इस प्रतिज्ञा के देश में आ रहे हैं। अब ध्यान दें, ये सिद्ध रूप से नए नियम में नमूना है। अब ये जैसा कि मैंने कहा, आप में से कुछ के विचारों से असहमति है, आप में से कुछ मूल्यवान नजरिन लोग चर्च ऑफ गॉड और आदि आदि के, ये आपको चोट ना पहुंचाए, परंतु इसे ध्यान पूर्वक देखें और इसके प्रतीकों को ध्यान से देखें। ध्यान दें और देखें, यदि हर बिंदु सिद्ध नहीं है तो यात्रा के 3 चरण थे और इस यात्रा के भी 3 चरण हैं, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, मिस्र देश को छोड़ते हुए बाहर आए और उसके लहू के बलिदान के द्वारा पवित्र किए गए और अपने पापों से धुल गए और तीर्थयात्री और परदेशी हो गए, दावा करते हुए कि एक देश को ढूंढ रहे हैं, एक नगर को जो आ रहा है या एक प्रतिज्ञा। ऐसे ही इजराइल जंगल में परदेशी रहा, विश्राम का कोई स्थान नहीं, रात्रि रात्रि के बाद यात्रा में चलते रहे अग्नि स्तंभ का अनुकरण करते हुए, परंतु अंततः प्रतिज्ञा के देश पर आ गए जहां वे बस गए। यही जहां पर विश्वासी आता है, वो पहले इस पहचान पर आता है कि वो एक पापी है, तब वो पानी के द्वारा अलग किया जाता है, जल के धुलने के द्वारा, लहू के द्वारा और या जल के धोने के द्वारा, बल्कि वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, तब विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा, वो भागी हो गया और परमेश्वर के साथ शांति से मसीह के द्वारा यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और यात्रा में जाने दिया। आप समझे, यात्रा में तब वो परदेशी और एक तीर्थ यात्री हो जाता है। वो अपनी यात्रा में है, किस लिए? एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की। इज़राइल को अभी भी प्रतिज्ञा नहीं मिली थी, परंतु वे अपनी यात्रा में थे और बिना उत्तेजित हुए, कृपया समझिए, यही जहां आप नजरीन और पिलग्रिम होलीनेस हैं और सब आदि आदि, क्योंकि इज़राइल जब वे कादेश बर्निया स्थान पर आए, जब भेदिए गए और कहा देश तो महान है, परंतु उनमें से कुछ ने वापस आकर और कहा हम इसे नहीं ले सकते क्योंकि नगर दीवारों से घिरे हुए हैं और आदि आदि, परंतु यहोशू और कालिब खड़े हुए और कहा हम उसे लेने के लिए योग्य से अधिक हैं, क्योंकि उनके पहले से परिपत्र पर हस्ताक्षर के बयान, क्योंकि उन्होंने अनुग्रह के 2 कार्यों पर विश्वास किया था, न्यायोचितता और पवित्रीकरण, और इससे आगे ना जा सके। और सुनिए, वो समस्त पीढ़ी जंगल में नष्ट हो गई, परंतु वे 2 जो प्रतिज्ञा देश में जाकर प्रमाण को ले आए थे कि ये अच्छा देश है और हम उसे लेने के लिए योग्य से बढ़कर हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, तब बजाय लोग जाने के पवित्र आत्मा प्राप्त करने के अन्य भाषाओं में बोलने लगे, परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करने लगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, चिन्ह चमत्कार, आश्चर्य कर्मों, उन्होंने अनुभव किया कि ये उनकी शिक्षा की रीति रिवाज को तोड़ देगा। और इसका क्या हुआ? देश में नष्ट हो गए, ये ठीक बात है, परंतु विश्वासी कालेब और यहोशू तत्पर थे, ये प्रतिज्ञा पर जा रहे थे, वे उस देश में पहुंच गए और देश को ले लिया और उस भूमि में बस गए, स्वामी के समान, और हम न्याय उचितता पवित्रीकरण पर कभी नहीं रुके, और हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर चले। हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने में ना रुकें, बपतिस्मा होने के बाद हम ना रुकें, क्योंकि उसने हमें पाप भरे जीवन से शुद्ध किया है। परंतु अब हम एक स्थिति की ओर यत्न कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की प्रतिज्ञा पर, क्योंकि पतरस ने पेंतेकोस्त के दिन कहा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्हें प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। इसलिए इफिसियों यहाँ हमें यहोशू के समान उपयुक्त स्थान में स्थिर करती है, क्योंकि यहोशू ने उस देश में पार पहुँचने पर और भूमि लेते हुए तब उसने भूमि को बांटा। यहाँ इफ्राइम, यहाँ मनश्शे, और ये यहाँ पर गाद, यहाँ पर बिन्यामीन, यहाँ उसने भूमि को बांटा। और ध्यान दें, ओ इस पर हमारे हृदय उत्तेजित होते हैं, प्रत्येक इब्री माताएं उन बालकों को जन्म दे रही थीं। उसने अपनी प्रसव पीड़ा में वही स्थान बोला जहां उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश में निर्धारित स्थिति में होना था। ओ, ये एक महान अध्ययन है। यदि हम इसके विस्तार में जा सकें, जो कि घंटों घंटों का समय लेगा। किसी दिन जब हम अपना आराधनालय तय कर लेंगे, तो मैं आकर और पक्के 2 महीने लूंगा। ध्यान दें, जब वे उनमें से प्रत्येक वे माताएं, जब उसने इफ्राइम कहा, जब वो प्रसव पीड़ा में थी, उसे निर्धारित स्थिति में रखा गया जहां उसके पांव तेल में थे, ठीक वैसे ही उनमें से प्रत्येक जहां वे थे। और यहोशू ये ना जानते हुए, परंतु प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, प्रतिज्ञा के देश में होते हुए प्रत्येक मनुष्य को उसकी प्रतिज्ञा दी, ठीक वही जो पवित्र आत्मा ने प्रतिज्ञा की थी उस जन्म के द्वारा वहाँ पहले। कैसे परमेश्वर ने ये कुछ कलीसियाएं उनकी प्रसव पीड़ाओं के द्वारा स्थापित की। ओ, उन्हें कभी कभी जबरदस्त मिला। जब एक कलीसिया पीड़ाओं में तड़पती है इस संसार से अलग, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए कि पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा हमारे लिए वैसे ही वास्तविक है जैसी ये पेंतेकोस्त पर थी, कैसे वे उस प्रसव पीड़ा में होते हुए कर रहे और रोए। परंतु जब उन्होंने जन्म लिया और परमेश्वर के राज्य में निर्धारित स्थानों में जन्मे, तब पवित्र आत्मा ने कलीसिया में किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यद्वक्ता, किसी को शिक्षक, किसी को चरवाहा, किसी को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त किया। तब उसने वहाँ अन्य भाषाओं में बोलना, भाषाओं का अनुवाद, ज्ञान, बुद्धि, चंगाई के वरदान, सब प्रकार के आश्चर्यकर्म। कलीसिया कहाँ पर है? अब मेरे करने का ये उद्देश्य है। कलीसिया सदा किसी और का स्थान लेने का यत्न करती है, परंतु ये ना करें। आप एप्रेम के स्थान में अनाज कभी नहीं उगा सकते यदि आप मनुष्य हैं। आपको मसीह में अपना स्थान लेना है, उपयुक्त स्थान लें। ओ, जब हम इसमें जाते हैं तो ये गहरा और भरा हुआ है। कैसे परमेश्वर कलीसिया में अन्य भाषा बोलने वाले को रखता है। दूसरा, अब हमें कई बार सिखाया गया है हम सबको अन्य भाषा में बोलना है, ये गलत है। हम सबको ये करना है? नहीं, हमें नहीं। उन सब ने एक चीज नहीं की, प्रत्येक को भूमि दी गई थी और प्रेरणा के द्वारा बांटी गई थी, और प्रत्येक, मैं पवित्र वचन को लेकर आपको सही सही दिखा सकता हूँ कि वो उन्हें उस स्थान पर रखता है जहाँ उन्हें होना था, उपयुक्त स्थान में। कैसे वो 2.5 गोत्र नदी के इस पार रुक गए, कैसे उनकी माताएं उनके जन्म पर चिल्लाई, कैसे वो प्रत्येक स्थान होना था। और अब आपके अंदर आने के पश्चात, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बाहर होकर युद्ध से स्वतंत्र हो गए। आपको अब भी प्रत्येक इंच के लिए लड़ना है जिस पर आप खड़े हैं। इसलिए देखिए, कनान महान स्वर्ग को नहीं दर्शाता, क्योंकि यहाँ युद्ध और परेशानियाँ और घात और संग्राम और आदि आदि हैं। परंतु इसने ये दर्शाया कि ये एक सिद्ध चाल होनी चाहिए। यहाँ जहाँ आज कलीसियाएं असफल हो रही हैं इस चलन पर, क्या आप जानते हैं कि आपका अपना व्यवहार किसी को चंगा हो जाने से रोक सकता है? आपका दुर्व्यवहार आप विश्वासियों के अस्वीकार किए गए पापों से, ये इस कलीसिया के लिए करारी हार का कारण हो सकता है, और न्याय के दिन आप हर छोटी छोटी बात के लिए उत्तरदायी होंगे। वो आप कहते हैं, अब एक मिनट रुके भाई ब्रैनम, अरे ये सत्य है, इस पर सोचें। यहोशू जब पार होकर उस भूमि पर पहुंच गया, परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी कि जरा सोचिए, पूरे अभियान में युद्ध करना बिना किसी मनुष्य की क्षति के, यहाँ तक कि बिना खरोंच के, बिना नर्स के या प्राथमिक उपचार या पट्टी के। आमीन। परमेश्वर ने कहा, भूमि तुम्हारी है, जाओ लड़ो। इस पर सोचें, एक पूरे अभियान में युद्ध करना है, और वहाँ कोई आसपास रेड क्रॉस नहीं थी, कोई भी घायल नहीं होगा। और उन्होंने अमोरियों को घात किया और हित्तियों को, परंतु जब तक पाप भीतर नहीं आया, एक भी घायल नहीं हुआ उस शिविर में। और जब अक्कन ने वो बाबुल का वस्त्र लिया और वो सोने की पच्चर और अपने शिविर के नीचे छिपा ली, तब अगले दिन उन्होंने 16 व्यक्ति गंवा दिए। यहोशू ने कहा, रुको रुको, एक मिनट रुको, कहीं कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। हम 7 दिनों का उपवास रखने जा रहे हैं, परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है, हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, हमारे शत्रु हमारे पैरों में गिरेंगे। और यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हुआ है कहीं पर, क्योंकि हमारे 16 आदमी मृत पड़े हैं, वे इजरायली भाई हैं और वे मरे पड़े हैं। ये क्यों मर गए निर्दोष मनुष्य? क्योंकि एक व्यक्ति पंक्ति से बाहर है। आप देखिए, कारण कि इसे सीखने की आवश्यकता है। कलीसिया पंक्ति में है, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ, और आपस में एक दूसरे के साथ पंक्तिबद्ध है, सीधे सीधे ऊपर चल रहे हैं, संतुलन के साथ, सब मनुष्य के सामने परमेश्वर का भय मान रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति ने वस्त्र चुराया है और ऐसा कुछ किया है जो नहीं करना चाहिए, और 16 पुरुषों का जीवन ले लिया। मैं सोचता हूँ ये 16, वे हो सकता है अधिक हों, मैं विश्वास करता हूँ कि वे 16 पुरुष थे जो मरे। यहोशू ने बुलाकर कहा, कहीं गड़बड़ ही है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है और कोई गड़बड़ी है। जब हम रोगी को अपने सामने लाते हैं और वे चंगा होने में असफल होते हैं, तो हमें आवश्यकता है गंभीरता से उपवास करें, सभा बुलाएं, कहीं पर कुछ गड़बड़ी है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर को उस प्रतिज्ञा के साथ बने रहना है, और वो इसे करेगा। और उसने उपवास का प्रचार करवाया और उन्होंने ढूंढ लिया, उन्होंने पर्ची डाली और अक्कन ने इसे स्वीकार कर लिया, और उन्होंने अक्कन के परिवार को मार डाला और सब उन्हें जलाकर राख कर दिया और उसे वहाँ स्मृति चिन्ह के लिए छोड़ दिया। और यहोशू युद्धों में होकर आगे बढ़ता गया और हर चीज को बिना किसी खरोंच या एक घाव के लेता चला गया। अब भी उसी स्थिति में है। एक दिन उसे थोड़े समय की आवश्यकता थी, थोड़ा समय, कुछ अधिक समय। सूर्य अस्त हो रहा था, पुरुष रात्रि के समय में अच्छा युद्ध नहीं कर सकते। यहोशू, वो महान योद्धा, परमेश्वर से अभिषेक, सही स्थान पर स्थापित उस भूमि में, जैसे इफिसियों नई कलीसिया में अधिकार, भूमि का अधिकार उसे ले रहे थे, उसे थोड़े से समय की आवश्यकता थी। इसलिए उसने कहा, सूर्य थम जा, और वो लगभग 12 घंटों के लिए रुक गया, जब तक कि उसने वो भूमि जीत ना ली। समझे? अब इफिसियों की पुस्तक हमें मसीह में सही स्थान में रखती है कि वे पवित्र भूमि में क्या थे। हम पवित्र भूमि में नहीं रखे गए, परंतु पवित्र आत्मा में। अब हम जरा एक वचन को पढ़ते हैं, देखिए कि कलीसिया कितनी सिद्ध है। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। ओ, मुझे ये पसंद है कि परमेश्वर ने उसे प्रेरित बनाया। किसी प्राचीन ने उसके ऊपर हाथ नहीं रखा, किसी बिशप ने उसे कहीं नहीं भेजा, परंतु परमेश्वर ने उसे बुलाया और प्रेरित बनाया। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। ध्यान दें, वो इसे कैसे संबोधित करता है। ये अविश्वासियों को नहीं है, ये कलीसिया को है। ये बुलाए हुओं को कहता है, पवित्र किए गए और जो मसीह यीशु में बुलाए गए हैं। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि हम मसीह यीशु में कैसे आते हैं, यदि आप पहला कुरिन्थियों 12 निकालें, इसने कहा, क्योंकि हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में होने के लिए बपतिस्मा लिया। कैसे, किसके द्वारा बपतिस्मा? पवित्र आत्मा के द्वारा, पानी के बपतिस्मे के द्वारा नहीं, आप चर्च ऑफ क्राइस्ट के लोगों, परंतु एक ही आत्मा के द्वारा, आधाता माँ आत्मा, हाथ मिलाने के द्वारा नहीं, पत्र के द्वारा नहीं, ना एक छिड़काव के द्वारा, परंतु एक आत्मा के द्वारा हम सब ने एक ही देह में बपतिस्मा लिया। हमारा अधिकार वो भूमि जो परमेश्वर ने हमें रहने के लिए दी, पवित्र आत्मा, वैसे ही जैसे उसने यहूदियों को कनान दिया, उसने हमें पवित्र आत्मा दिया। एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक देह में बपतिस्मा लिया। आप समझे? अब ये आत्मिक कनानियों से बात कर रहा है, इज़राइल, आत्मिक इज़राइली, जिन्होंने देश को अधिकार में लिया। ओ, क्या आप आनंदित नहीं कि आप मिस्र के लहसुन से बाहर आ गए? क्या आप आनंदित नहीं आप जंगल से बाहर आ गए? और स्मरण रखें, उन्हें मन्ना ही खाना था, स्वर्ग से स्वर्गदूतों का खाना, जब तक वे पार होकर उस देश में नहीं पहुंच गए। और जब वे पार होकर उस देश में पहुंच गए, मन्ना गिरना बंद हो गया, तब वे पूरी तरह से परिपक्व हो गए थे और उन्होंने भूमि का पुराना अनाज खाया। अब जबकि आप बालक नहीं हैं, अब आपको सुसमाचार के सच्चे दूध की इच्छा नहीं है कि आपकी देखभाल करनी पड़े और पुचकारना और आराधनालय में आने के लिए उत्साहित करना पड़े। अब आप वास्तविक परिपक्व मसीही हैं, अब आप ठोस भोजन खाने के लिए तैयार हैं, आप उसमें आने के लिए तैयार हैं जो उसने कहा है, आप उन बातों को समझने के लिए तैयार हैं जो गहरी और भरपूर हैं। ओ, हम उसमें सीधे सीधे जा सकते हैं। और ओ, ये तो पृथ्वी के रचने से पहले छिपी हुई थी। उसने कहा, अब आप इसमें आ गए हैं, मैं ये आपको संबंधित कर रहा हूँ। उन्हें नहीं जिन्होंने अभी अभी मिस्र को छोड़ा है, उनको नहीं जो अभी यात्रा में हैं, परंतु उनको जो प्रतिज्ञा के देश में हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञा प्राप्त कर ली है। कितनों ने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त कर ली है? ओ, क्या आप आनंदित नहीं हैं? यहाँ अब इस देश में पुराने अनाज को खा रहे हैं, परमेश्वर की ठोस वस्तुओं को खा रहे हैं और स्पष्ट समझ को प्राप्त किया है। आपका आत्मिक मस्तिष्क व्यवस्थित हो गया है। आप जानते हैं कि सही में वो कौन है। आप ठीक ठीक जानते हैं वो क्या है। आप ठीक ठीक जानते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। आप इस विषय में सब ठीक ठीक जानते हैं। आप जानते हैं कि आपने किस में विश्वास किया है और उत्साहित हुए हैं। आपने जो आज के दिन के विरोध में वचनबद्ध हुए हैं, वो उसे बनाए रखने योग्य है। ओ, यही वो है, इन्हीं से जिनसे अब पौलुस बात कर रहा है। ध्यान से सुनिए, अब देखिए, मसीह यीशु में विश्वासी। अब इसे दोहराने के लिए मेरे पास कलीसिया हो। हम मसीह में कैसे आते हैं? कलीसिया में सम्मिलित होने के द्वारा नहीं, अपने नाम को पुस्तक में लिखवाने के द्वारा नहीं, डुबकी का बपतिस्मा लेने के द्वारा नहीं। कैसे हम मसीह में आते हैं? एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब ने एक प्रतिज्ञा में बपतिस्मा लिया देह में, और वो सब जो उस देश में है उसके भाग हो गए हैं। आमीन। ओ, मुझे ये पसंद है। यदि मेरा गला खराब ना होता तो मैं चिल्ला सकता था। जब मैं इस भूमि में आ गया तो ये मेरी है। अब मैं घर में हूँ, मैं कनान में हूँ, मैं प्रत्येक बात जिसके लिए परमेश्वर मुझे प्रयोग करना चाहता है अधीन हूँ। मैं पवित्र भूमि पर चल रहा हूँ। एक राजा का बालक वस्त्र पहने हुए और तैयार। मैं मिस्र से बाहर आ गया हूँ, प्रतिज्ञा के देश से होकर आया हूँ, परीक्षाओं में स्थिर रहा हूँ, यर्दन से पार हो गया हूँ और इस धन्य प्रतिज्ञा में हूँ। मैंने किस प्रकार से इसे पाया? एक ही आत्मा के द्वारा। इसी प्रकार से पौलुस ने इसे पाया, मुझ पर भी उसी प्रकार से हुआ जैसा उस पर हुआ, उसी प्रकार से आप पर किया। एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने बपतिस्मा लिया, ना कि छींटे से। इसका केवल थोड़ा सा छिड़काव बहुत अच्छा लगता है, परंतु मैं नीचे डूबा हूँ। सब कुछ पवित्र आत्मा के अधीनता के नीचे तैरने को बनाया गया। यही प्रतिज्ञा है। हमारा इफिसियों, हमारा यहोशू जो कि पवित्र आत्मा है, यहोशू का अर्थ यीशु बचाने वाला, यहोशू का अर्थ पवित्र आत्मा, इसका आत्मिकता में प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि वो स्वाभाविक में था कि वो हमारा महान योद्धा है, वो हमारा महान मार्गदर्शक है। जैसे परमेश्वर यहोशू के साथ था, ऐसे ही परमेश्वर है पवित्र आत्मा में, हमें चला रहा है। और जब पाप शिविर में आता है तो पवित्र आत्मा रुकने की मांग करता है। या इस कलीसिया में क्या गड़बड़ी है? कुछ गलत है। ओ, क्या आप नहीं देख सकते कि हम में कैसे बहुत सारे कीश के पुत्र हैं? अब बहुत सारे शाऊल धर्म विद्यालयों से आ रहे हैं और सेमिनरियों से, और बाहर जाकर विकृत बातों को सिखा रहे हैं, जैसे कि बाइबल ने कहा वे करेंगे। प्रतीत होता है विश्वास नहीं है, अपने आप को आपसे अलग कर रहे हैं, आपके साथ कोई संगति नहीं है, और आदि आदि। भक्ति का भेष भरते हैं और उसकी सामर्थ को नकारते हैं, ऐसों से अलग रहना। वे नहीं जानते कि वे कहां से आए हैं, वे कारण नहीं बता सकते। मैं ये भाई बूथ क्लिबॉन की ओर से कह रहा हूं, मेरा एक मित्र है। यदि कोई ऐसी चीज है जो अनाधिकृत है, अभक्ति से जन्मी हुई, संसार की कोई भी चीज, वो खच्चर है। खच्चर सारी चीजों से नीचे है। वो है, वो नहीं जानता कि वो कौन है। वो स्वयं को उत्पन्न नहीं कर सकता, और एक खच्चर दूसरे खच्चर को जन्म नहीं दे सकता और खच्चर हो जाए। वो समाप्त हो गया। वो नहीं जानता कि उसका पिता कहाँ से आया, ना ही अपनी माँ को जानता है, क्योंकि वो एक छोटा छोटा गधा है और एक घोड़ी। परमेश्वर ने ये नहीं किया। ऐसों को आप परमेश्वर के जिम्मे न डालें। परमेश्वर ने ये कभी नहीं किया। परमेश्वर ने कहा हर चीज अपनी जाति को उत्पन्न करेगी। जी हाँ श्रीमान। परंतु खच्चर एक खच्चर है। उसका पिता गधा था, उसकी माँ घोड़ी, इसलिए वो नहीं जानता कि वो कहाँ से है। वो एक घोड़ा खच्चर बनने का यत्न कर रहा है, यानी एक खच्चर, या वो एक घोड़ा है गधा बनने का यत्न कर रहा है, एक गधा घोड़ा बनने का यत्न कर रहा है। वो नहीं जानता कि वो कहाँ से है। और संसार में वो बहुत मजबूत चीज है, आप उस पर जरा भी विश्वास नहीं कर सकते। और इसी प्रकार से कलीसिया में बहुत से लोग हैं, और वे नहीं जानते कि उनका पिता कौन है, वे नहीं जानते कि उनकी माँ कौन है। वे केवल एक बात जानते हैं, या तो वे प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या पेंटिकॉस्टल या कुछ हैं। वे नहीं जानते कि वे कहाँ से आए हैं। और एक बूढ़ा गधा, आप उस पर जितना चाहे उतना चिल्लाए, और वो वहाँ खड़ा हुआ अपने कानों को चिपकाए और देखता है। आप उन्हें सारी रात प्रचार कर सकते हैं, और वे जब जाते हैं तो जरा भी और अधिक नहीं जानते। उतना ही जानते हैं जितना अंदर आते समय जानते थे। अब ये ठीक बात है, मेरा अर्थ असभ्य होने से नहीं, परंतु मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ। परंतु वो एक चीज जो वो कर सकते हैं कि वे अच्छे कार्यकर्ता हैं, ओ वे बस काम 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 करते हैं। ये मुझे उन आर्मेनियन झुंड के विचार में ले जाता है, वे सदा कार्य करने का यत्न इस प्रकार से करते हैं कि उनका मार्ग स्वर्ग की ओर हो। ये ठीक बात है, एक खच्चर, ओ महिला सहायक समिति और मुर्गी दावत ताकि प्रचारक को भुगतान करें और हमें ये नृत्य करना है और ये सामाजिक, ये केवल काम 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 काम, और वे इसके लिए ये कार्य कर रहे हैं। आप उनसे पूछें, क्या जब से आपने विश्वास किया है आपने पवित्र आत्मा पाया? वे अपने कान बंद कर लेते हैं और नहीं जानते कि वे कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं। आपका क्या अर्थ है, ये कहाँ हुआ, आपका क्या अर्थ है वो पवित्र आत्मा? मैंने इसके विषय में कभी कुछ नहीं सुना। वो आप किसी प्रकार के कट्टरपंथी हैं। देखिए, वे नहीं जानते कि पिता कौन था या माँ कौन थी, और आप हर काम जो करते हैं उसके लिए उन्हें पीटना पड़ेगा, यहाँ मारो वहाँ मारो, यहाँ मारो वहाँ मारो। ये ठीक बात है, एक पुराना खच्चर, परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ, आपको ये किसी अच्छे नस्ल के घोड़े के साथ ये नहीं करना पड़ेगा। बस उसको एक बार चाबुक मारे और भाई वो गया, वो जानता है वो क्या कर रहा है। वो सही नस्ल के घोड़े की सवारी कितनी अच्छी है, ये कहने में कितना अच्छा है। लड़के आओ, ओ पुरुष, अच्छा है कि आप कसकर पकड़े रहे हैं, वो काठी को हवा नोड़ा देगा। सही नस्ल वाले मसीही के साथ यही बात है। हालेलुया, तुम पवित्र आत्मा प्राप्त करो, तुम में से प्रत्येक प्रायश्चित करे, तुम में से प्रत्येक और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए गया। जितनी जल्दी ही वे पानी में जा सकते हैं वे चले गए। वे दिन और रात चैन से नहीं रह सकते जब तक वे पवित्र आत्मा प्राप्त ना कर लें। क्यों? आप जानते हैं, एक मसीही जानता है कि उसका पिता कौन था। देखिए, जन्म देने के लिए ये दो को लेता है। वे सही पिता और माता। खच्चर नहीं जानता कौन सा पिता था या माँ कौन थी, परंतु हम जानते हैं कि कौन पिता या माँ थे, क्योंकि हम परमेश्वर के लिखित वचन से जन्मे हैं, आत्मा द्वारा पुष्टि किए हुए। पत्रस ने कहा, पेंटिकुस के दिन यदि आप लोग प्रायश्चित करोगे और तुम में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और भाई, एक वास्तविक नया जन्म पाया हुआ मसीही, ओ प्रभु, उसकी आत्मा जैसे ही वो वचन लेता है वो पवित्र आत्मा प्राप्त करता है। तब उससे कुछ पूछिए, वो जानता है कि वो कहाँ खड़ा है। क्या तुम दिव्य चंगाई में विश्वास करते हो? आमीन। क्या आप दूसरे आगमन पर विश्वास करते हैं? आमीन। ये खच्चर से पूछें, खच्चर धर्म, ओ मैं नहीं जानता, डॉक्टर जॉन ने एक बार कहा था, ओ ये शाउल के पीछे जाते हैं, समझे, ओ वे नहीं जानते। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी कलीसिया इस विषय में निश्चित नहीं है। ओ भाई, परंतु फिर से जन्म पाया हुआ एक पुरुष और महिला प्रभु यीशु के आने में निश्चित हैं। वे ऐसे ही निश्चित हैं जैसे उन्होंने पवित्र आत्मा पाया कि पवित्र आत्मा देने के लिए है। अब यीशु ने कहा, कुएं पर वो स्त्री, हम इस पहाड़ पर भजन करते हैं और यहूदी यरूशलम में। उसने कहा, स्त्री मेरे वचन सुन, समय आता है और अब है कि पिता उन्हें ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। वचन सत्य है, और प्रत्येक व्यक्ति जो बाइबल पढ़ेगा और जो बाइबल कहती है उसके प्रत्येक वचन का विश्वास करेगा और उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा, और वही पवित्र आत्मा पाएगा जो उन्होंने प्राप्त की उसी प्रकार से जैसे उन्होंने पाया। वही परिणाम वे पाते हैं, वही इन्होंने पाई जो उन्होंने पाई थी। वो जानता है कि कौन उसका पिता और माता थे। वो जानता है कि वो यीशु मसीह के लहू से धोया गया है, आत्मा के द्वारा जन्मा है, परमेश्वर के अभिषेक से भर गया। वो जानता है कि वो कहाँ खड़ा है। निश्चय ही वो कनान में है। वो जानता है कि वो कहाँ से आया है। वास्तविक मसीही के साथ ऐसा ही है। उससे पूछें, क्या जब से आपने विश्वास किया है पवित्र आत्मा पाया? आमीन भाई। उस दिन एक बूढ़े संत के पास खड़े हुए 92 वर्षीय उस महिला के 80 वर्षीय पास्टर से बात कर रहा था। मैंने कहा, दादी माँ, एक चमक के साथ जितनी हो सकती है। वो बोली, हाँ मेरे पुत्र। मैंने कहा, कितना समय हुआ कि आपने पवित्र आत्मा पाया? उसने कहा, परमेश्वर की महिमा हो, लगभग 60 वर्ष पहले मैंने इसे पाया। अब यदि वो खच्चर होती तो उसने कहा होता, अब एक मिनट रुकिए, मेरा पुष्टिकरण और छिड़काव तब हुआ था जब मैं अच्छा नीचे ही उन्होंने मुझे कलीसिया में लिया था और मैंने अपना पत्र इस प्रकार से लिया था। ओ मुझ पर दया हो। वो ये भी नहीं जानते कि वे कहाँ से हैं, परंतु वो जानती है कि उसका जन्म सिद्ध अधिकार कहाँ से आता है। जब ये घटित हुआ वो वहाँ पर थी। उसने जल से जन्म लिया और आत्मा से वो जान गई, और जल के द्वारा वचन के जल के धोने के द्वारा वचन लेता है। अब ध्यान दें कि ये कैसे संबोधित किया गया है उनको जो मसीह यीशु में है। पौलुस, अब स्मरण रखें, मैं लंबा समय ले रहा हूँ, परंतु मैं अध्याय को नहीं ले रहा हूँ, परंतु मैं जल्दी करूँगा। क्या आप ये पसंद करते हैं? ओ, ये हमें बताता है कि हम कहाँ पर हैं, परंतु हम इसे केवल एक रात्रि में नहीं कर सकते। हमें एक दो महीने के लिए प्रत्येक रात्रि चाहिए कि इसका अध्ययन करते हुए निकलें, शब्द शब्द करके वापस जाकर इसे इतिहास में से लेकर आएं और इस शब्द शब्द करके निकालें, और आपको दर्शाऊंगा कि ये सत्य है। अब मैं इस पद को फिर से जल्द पढ़ूंगा। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, मनुष्य की इच्छा से नहीं, संतों को जो इफिसुस में हैं, और समूचे बोधक मसीह यीशु में जो विश्वासी हैं, अर्थ है कि वे लोग बुलाए हुए हैं, अलग किए हुए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है और मसीह यीशु में हैं। और मेरे प्यारों, ये पत्री मैं तुम्हें संबोधित कर रहा हूँ। ओ, मैं पौलुस के लिए सोचता हूँ वहाँ उनके साथ इस समय, और कैसा आनंद है। ये बूढ़ा प्रेरित, इसका वहाँ पर सिर काटा गया था। मैं उस स्थान के पास खड़ा था जहाँ उन्होंने इसका सिर काटा था, परंतु उसका सिर उस नई देह पर है और अब दोबारा कभी नहीं कट सकता। और इस घड़ी वो वहाँ उनके साथ खड़ा है, वही प्रेरित जिसने ये लिखा है, और कहा, तुम जो मसीह यीशु में हो, एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने इस एक देह में बपतिस्मा लिया। अब ध्यान दें, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें सब चार्ली, क्या तुम सुन रहे हो? हमें सब आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है, न कि कुछ को प्रेरित और कुछ को ये, परंतु उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। वही पवित्र आत्मा जो पेंतेकुस्त पर उतरा था, वही पवित्र आत्मा आज यहाँ पर है। वही पवित्र आत्मा जिसने मरियम को चिल्लाया और अन्य भाषा बोली और शानदार समय और आनंद किया, और बातें जो उसने की, वही पवित्र आत्मा आज रात्रि यहाँ है। वही पवित्र आत्मा जिसने पौलुस को पानी के जहाज पर, जहाँ वो पानी के लट्ठे के समान दिखाई पड़ा और 14 दिन रात कोई सितारा या चांद नहीं, उसने वहाँ देखा और हर लहर पर शैतान सवार था, फिसलता हुआ, दांत चमका रहा था, और कहा, मैं तुझे डुबा दूंगा तू बूढ़े लड़के, मैंने तुझे अब ले लिया है। और जब पौलुस नीचे प्रार्थना करने को गया तो वहाँ एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ था, कहा, पौलुस तू ना डर, ये पुराना जहाज अमुक द्वीप पर टूटने जा रहा है, आगे बढ़कर अपना भोजन खा, अब ये ठीक है। यहाँ वो अपने छोटे छोटे हाथों पर जंजीरों के साथ आता है, उसके पैरों से जंजीर खिंचती आ रही है, और कहा, भयभीत ना हो पुरुषों, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्गदूत जिसका मैं दास हूँ मेरे पास आ खड़ा हुआ, और कहा, पौलुस तू मत डर। वही पवित्र आत्मा आज रात्रि यहाँ पर है, परमेश्वर का वही आत्मा हमारी सेवा कर रहा है, वही आत्मिक आशीषें हमें स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। ओ, हम यहाँ पर जरा एक मिनट के लिए रुकें। स्वर्गीय स्थानों में, अब कहीं किसी स्थान में नहीं, परंतु स्वर्गीय स्थानों में, हम स्वर्गीय में एकत्र हैं। इसका अर्थ उस विश्वासी का स्थान कि यदि मुझ पर प्रार्थना हो चुकी है, तुम्हारे लिए प्रार्थना हो गई है, या कलीसिया ने प्रार्थना कर दी है और हम संदेश के लिए तैयार हैं, और हम संतों के समान यहाँ पर एकत्र हैं, बुलाए हुए पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए, परमेश्वर की आशीषों से भरे हुए, बुलाए हुए चुने हुए स्वर्गीय स्थानों में अब बैठे हुए, हम अपने प्राणों में स्वर्गीय हैं। हमारी आत्माएं हमें स्वर्गीय वातावरण में ले गई हैं। ओ भाई, आप वही हैं एक स्वर्गीय वातावरण में। ओ आज रात्रि क्या घटित हो सकता है, आज रात्रि क्या हो सकता है यदि हम स्वर्गीय वातावरण में बैठे हुए होते और पवित्र आत्मा प्रत्येक हृदय पर जो यहाँ फिर से बना है, मंडरा रहा है और मसीह यीशु में नई सृष्टि है, सारे पाप लहू के तले उस सिद्ध आराधना में हमारे हाथ परमेश्वर की ओर उठे हुए हैं, हमारे हृदय उठे हुए मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, स्वर्गीय स्थानों में मिलकर आराधना कर रहे हैं। क्या आप कभी एक में बैठे हैं? ओ मैं तब तक बैठा रहूंगा कि मैं आनंद से रोना पड़ूं और कहूं परमेश्वर मुझे यहां कभी ना छोड़े। केवल मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थान। हमें किससे आशीषित किया है? दिव्य चंगाई, पूर्व ज्ञान, प्रकाशन, दर्शनों, सामर्थों, अन्य भाषाओं, अनुवादों, बुद्धिमानी, समझ, सारी स्वर्गीय आशीषें और ना बता सकने वाला आनंद, महिमा से भरा हुआ, प्रत्येक हृदय आत्मा से भरा हुआ, एक साथ चल रहे हैं, एक साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। कोई भी एक बुरा विचार हमारे बीच में नहीं है, एक भी सिगरेट नहीं पी गई, कोई छोटे वस्त्र नहीं, एक भी ये नहीं वो नहीं या कुछ और, एक भी बुरा विचार नहीं, किसी में किसी के विरोध में कुछ नहीं, हर कोई प्रेम और एक रास्ता में बात कर रहा है, एक स्थान में सब एक ही विचार में है। तब यकायक स्वर्ग से तेज आंधी के समान शब्द आता है, आप उसी स्थिति में हैं। हमें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। तब पवित्र आत्मा किसी पर उतर सकता है और कहे, यहोवा यूं कहता है, अमुक अमुक स्थान पर जाओ और वो अमुक कार्य करो। देखिए, ये चुटकी बजाने के समान होता है, समझे? यहोवा यूं कहता है, अमुक स्थान पर वो ठाना हुआ कार्य करो। देखिए, ये उसी प्रकार होता है। हमें एक साथ सारी स्वर्गीय आशीषों से स्वर्गीय स्थानों में आशीषित किया। देखिए, जैसा कि उसने हमें चुन लिया है, क्या हमने उसे चुना या उसने हमें? उसने हमें चुना कब? उस रात्रि जब हमने उसे स्वीकार किया। चुना जैसे कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, नामधारियों में प्रेम में। परमेश्वर ने हमें कब चुना? परमेश्वर ने आपको कब चुना? यही पवित्र आत्मा पाया। उसने आपको कब चुना? संसार की सृष्टि से पहले। उसने आपको चुना और यीशु को भेजा ताकि वो आपके पापों को शांत करने वाला हो, कि तुम्हें बुलाए कि स्वयं से मेल मिलाप कर ले, कि प्रेम करे। ओ इच्छा है कि हमारे पास कुछ और मिनटों को हो। मुझे इसके पहले कि हम कुछ आगे बढ़े, वापस उत्पत्ति 1:26 में जाएं। मैं बुधवार को इसे लूंगा। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, इसके पहले कि मनुष्य को बनाता, उसने स्वयं को एलोहिम कहा। इब्रानी में इस शब्द का अर्थ है स्वयं भू, सब स्वयं से। उससे पहले कुछ भी विद्यमान नहीं था, वही केवल अस्तित्व में था, स्वयं भू केवल। एल एला एलोहिम का अर्थ है सर्व पर्याप्त, सर्व सामर्थी, सर्व शक्तिमान, स्वयं भू। ओ परंतु उत्पत्ति दो में जब उसने मनुष्य को बनाया, उसने कहा मैं हूँ, वाई ए एच यू जे यू वी यू एच, यहू यहोवा। इसका क्या अर्थ है? मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, वो जिसने स्वयं में से उत्पत्ति की कि मेरा पुत्र हो, या एक अल्पकालिक या एक नौसिखिया, मेरा एक छोटा। महिमा हो। क्यों? उसने मनुष्य को दिया। यहोवा का अर्थ उसने मनुष्य को एक नौसिखिया ईश्वर में होने दिया, क्योंकि वो एक पिता है परमेश्वर, और उसने मनुष्य को एक नौसिखिया ईश्वर बनाया, इसलिए वो स्वयं भू नहीं रहा, वो अपने परिवार के साथ अस्तित्व में है। एला एला एलोहिम। अब वो यहोवा है। यहोवा का अर्थ वो जो अपने परिवार के साथ विद्यमान है। परमेश्वर ने मनुष्य को समस्त पृथ्वी पर राज्य करने के लिए बनाया। उसके पास राज्य था और पृथ्वी मनुष्य के अधिकार में थी। क्या ये वचन है? तब यदि ये उसके अधिकार में थी तो वो इस पृथ्वी पर ईश्वर था। वो बोल सकता था और वैसा होता। वो ये बोल सकता था और वैसा होता। वो वही है परमेश्वर यहोवा, वो जो एक समय स्वयं भू था परंतु अब अपने परिवार के साथ अस्तित्व में है, और उसके बालक उसके साथ हैं। आप वहीं पर हैं। अब इसे पढ़ें। हम इसे बुधवार रात्रि में देखेंगे जब हमारे पास अधिक समय होगा। हमारे पास अब 15 मिनट का समय और है, और हम मैंने सोचा मैं यहाँ किसी निश्चित स्थान पर आ जाऊँ, परंतु हम नहीं हो पाएंगे जहाँ पर हम प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा से मोहर बंद हो जाएं। ठीक है। अब हम कब परमेश्वर के दास कहलाए थे? ऑर्वन नेविल कब परमेश्वर के दास कहलाए? ओ प्रभु, ये मुझे विचलित कर देता है। मैं आपको बताता हूँ, हम कुछ वचनों को लें। मैं चाहता हूँ कि पहले आप पहला पत्रस 1:20 को लें, और पैट प्रकाशित वाक्य 17:8 निकालो, और मैं प्रकाशित वाक्य 13 लेता हूँ। अब हम यहाँ सुनना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको कब मसीही कहा? ओ मुझे ये अच्छा लगता है। ये है, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। ठीक है भाई नेविल, आपने पहला पत्र 1:20 निकाल लिया, पढ़िए 1:19 और 1:20। इसे सुनिए, ये 1:19 और 1:20 है। हाँ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। वो कब से ठहराया गया? जगत की उत्पत्ति से पहले। भाई पैट, मेरे लिए पढ़िए प्रकाशित वाक्य 17:8। वो पशु तूने देखा है, वो पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की ये दशा देखकर कि पहले था अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। कौन धोखा खाने वाला है? कौन इस धार्मिक व्यक्ति के द्वारा धोखा खाने जा रहा था जैसे शाऊल था? वो बहुत चालाक था और इतना सिद्ध, जब तक कि वो किसी को धोखा न दे, चुनेव को यदि ठीक है। प्रकाशित वाक्य 13:18 मैं आपके लिए ये पढ़ दूं। और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, इस पशु की पूजा करेंगे। हमारे नाम कब मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए? जब मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले घात किया गया, जब परमेश्वर यहोवा था, एल एला एलोहिम स्वयं भू, जैसा कि एक बड़ा हीरा, और वो कुछ और नहीं हो सकता। परंतु इस हीरे के अंदर उसके गुण बचाने वाले के थे। इस गुण में उसके अंदर एक चंगा करने वाला था। यहाँ कोई बचने वाला नहीं था और न चंगा होने वाला, परंतु उसके गुणों ने इसे उत्पन्न किया। इसलिए तब जगत की उत्पत्ति से पहले जब उसने जाना कि वो महान प्रदर्शन यहाँ उसमें कि वो एक बचाने वाला होगा, कि वो आएगा और देह बनेगा और हमारे मध्य में रहा, और वो जानता था कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने मेमने को अपनी पुस्तक पर बलिदान किया और आपके नाम पुस्तक में जगत की उत्पत्ति से पहले लिखे। इसे सुनिए, पहले से ठहराया जाना पूर्व ज्ञान को पलट कर देखता है। मेरा अर्थ चुनाव, चुनाव पूर्व ज्ञान की ओर पीछे देखता है और पहले से ठहराया जाना भाग्य को देखता है। इसे न भूलें कि चुन लिया जाना यहाँ पीछे देखता है, ये यहाँ पर है। मैं एक गोखरू था, मैं पाप में जन्मा, अपराध में बढ़ा, संसार में झूठ बोलता हुआ आया, पापियों के मध्य में जन्मा, पिता और माता और मेरा समस्त परिवार पापी, मैं एक कटीला गोखरू था। परंतु अचानक से मैं गेहूं का दाना हो गया। ये कैसे घटित हुआ? ये क्या है? चुनाव। परमेश्वर ने पृथ्वी के रचने से पहले इस कटीले गोखरू को चुना ताकि ये गेहूं का दाना बने। अब मैं जानता हूं कि मैं गेहूं का दाना हूं क्योंकि मैं बचा लिया गया हूं। मैं ये कैसे किया? पीछे देखा और देखा कि ये उसने पहले से ठहराया था, बहुत समय पहले। उसने पूर्व ज्ञान से देखा कि मैं उससे प्रेम करूंगा, इसलिए उसने अपने ही पुत्र के द्वारा एक अधिकार बनाया कि उसके द्वारा मैं गोखरू कांटे से गेहूं का दाना हो गया। अब मैं कहां पर हूं? मैं बच गया, मैं परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहा हूं। पहले से ठहराया जाना क्या देखता है? भाग्य को। वो मुझे कहां ले जाएगा और मैं कहां जा रहा हूं? आमीन। इसने आपको पा लिया है, आप इसी स्थिति में हैं। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ें, तब हमें जल्द ही बंद करना है।
अकॉर्डिंग एज ही चोज अस इन हिम बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड,
जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के सुमृति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। उसने क्या किया? उसने पूर्व ज्ञान के द्वारा हमें पहले से देखा, ये जानते हुए कि वो एक बचाने वाला था, स्वयंभू, कोई भी स्वर्गदूत नहीं था, कुछ नहीं, केवल परमेश्वर एला एलोहिम स्वयंभू, कुछ भी नहीं, केवल वही अकेला। परंतु उसमें एक बचाने वाला था। अच्छा, तो वो क्या बचाने जा रहा था? कुछ भी नहीं खोया था। ये जानते हुए तब उसने जाना कि उसके अंदर का ये महान गुण सामने की कोई परियोजना होगी कि वो बचा सके। तब जब ये उसके पूर्व ज्ञान से हुआ, उसने देखा और उसने प्रत्येक को देखा जो इसे स्वीकार करेगा, और तब ऐसा करने के द्वारा उसने कहा, इसे बचाने के लिए केवल एक ही विधि है जो मैं ये कर सकता हूँ, स्वयं नीचे उतरूंगा और देह बनूंगा और मनुष्य के पापों को अपने पर लूंगा और उसके लिए मरूं, ताकि मैं वो हो सकूं जिसकी आराधना की जाए, क्योंकि वो परमेश्वर है, आराधना का उद्देश्य। तब वो नीचे उतरा और अपने ऊपर ले लिया, और जबकि उसने ये किया, उसने ये किया कि ताकि वो आपको बचा सके जो बचना चाहते थे। क्या आप समझे मेरा क्या अर्थ है? पूर्व ज्ञान के द्वारा, और वो असीम परमेश्वर जो सारी बातें जानता है, मेमने को देखा और उसने मेमने को पृथ्वी के रचने से पहले बलि किया, और उसने आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखा, और उसने शैतान की धोखेबाजी को देखा कि वो क्या करेगा, इसलिए उसने आपके नाम को वहाँ रखा, और उसने कहा कि मसीह विरोधी इतना धार्मिक होगा, इतना अच्छा, इतना अच्छा व्यक्ति, ऐसा समझदार पुरुष, इतना धार्मिक मनुष्य कि वो यदि संभव हो सके तो चुनावों को भी बहका दे, परंतु ये असंभव है क्योंकि उनके नाम जगत की उत्पत्ति से पहले अभिषिक्त हैं। उसने उन्हें चुनाव के द्वारा चुना है और पहले से ठहराए जाने के द्वारा वे जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। आप उसी स्थिति में हैं। अब इसका कौन संदेह कर सकता है? यही पौलुस ने कहा है। ये पौलुस का वचन है, ये पौलुस का लेख है, यही जो उसने अपनी कलीसिया में सिखाया। पृथ्वी के रचने से पहले कलीसिया यथा स्थान पर, जब परमेश्वर अपनी जच्चा की पीड़ा आपको ला रहा था जानते हुए कि आप क्या करेंगे, वो आपको अपनी देह में सही स्थान पर रखता है कि एक गृहिणी बने, एक किसान होने के लिए, प्रचारक होने के लिए, भविष्यवक्ता होने के लिए, ये या वो आपको सही स्थान पर रखता है। तब जब हम मिस्र के लहसुन वाले देश से आए, पवित्रीकरण से होते हुए और प्रतिज्ञा के देश में बपतिस्मा लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इफिसियों 4:30 ने कहा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिसमें कि तुम छुटकारे के दिन तक के लिए मोहर बंद किए गए हो। तब परमेश्वर ने कलीसिया को पहले से ठहराया। उसने कहा, और सारे लोग, लाखों लाख लोग होंगे जो कि धार्मिकता में चलेंगे और धोखा खाएंगे। केवल वे जो धोखा नहीं खाएंगे, वे वो होंगे जो प्रतिज्ञा के देश में आएंगे, वे जिनके नाम पृथ्वी के रचने से पहले मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, और यहाँ प्रतिज्ञा के देश में आए हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। बहुत से लोग डरते हैं कि आप विचित्र सा कुछ करने जा रहे हैं। बहुत से लोग डरते हैं कि पवित्र आत्मा आपसे कुछ करवाएगा कि आप लोगों के सामने लज्जित हों। बहुत से लोग डरते हैं, वे चिल्लाएंगे और उनकी प्रियसी उन्हें रोते हुए देखेगी, या माँ, या उनके पड़ोसी, या आपका स्वामी आपको देखेगा। बंद करने के पहले मैं आपको एक व्यक्ति के विषय में बताऊं। एक व्यक्ति का नाम दाऊद था, और जब परमेश्वर का संदूक वहाँ फिलिस्तीन देश में था और ये पुरानी बैलगाड़ी पर उसे खींचते हुए ला रहे थे, जब दाऊद ने उस संदूक को आते देखा, उसने एक छोटा लबादा पहन रखा था। वो वहाँ भागा, उसने अपने पैर हवा में उछाले और चारों ओर कूदा और चिल्लाया और कूदा और नाचा और कूदा और नाचा, और वो इज़राइल का राजा। और उसकी पत्नी ने बाहर खिड़की से देखा और उसे बहुत ही विचित्र व्यवहार करते देखा, उसने उसका तिरस्कार किया। क्यों? उसे कहना चाहिए था, मूर्ख, बाहर उसे देखो, जिस प्रकार वो विचित्र कार्य कर रहा है, अपने पैरों को हवा में उछाल रहा है और इधर उधर कूद रहा है और इस प्रकार व्यवहार कर रहा है, क्यों, वो पागल होगा। और उस रात्रि जब वो भीतर आया, उसने कहा इस प्रकार के शब्दों में, क्यों तूने मुझे लज्जित किया, क्यों तू राजा, मेरा पति बाहर ऐसे कर रहा था, इस प्रकार व्यवहार कर रहा था। दाऊद ने कहा, कल मैं इससे भी अच्छा करूंगा। जी हाँ श्रीमान, उसने कहा, क्या तू नहीं जानती कि मैं प्रभु के लिए नाच रहा था। वो पार कर गया, वो प्रतिज्ञा के देश में था, वो अपनी शैली खो चुका था और संसार की गंदगी। वो ये जानकर इतना आनंदित था कि संदूक उसके अपने नगर में आ रहा था। और वो, मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग पवित्र आत्मा पाने से डरते हैं कि वे अन्य भाषा में बोल सकते हैं। वे डरते हैं कि कोई कहेगा, ओ, ये भाषा बोलने वालों में से एक है। वे कलीसिया में आने से डरते हैं और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने से, क्योंकि वे इस बात से शर्माते हैं। किसी ने कहा, मुझे अपने टेपों को वापस लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे का प्रचार किया है। मैं उन्हें वापस लेने नहीं जा रहा हूँ, मैं और बना रहा हूँ। ये ठीक बात है, और बना रहा हूँ। ये बाइबल है, यदि वे इसे पसंद नहीं करते कि हमने कल क्या किया, ध्यान दें आने वाले कल में हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए, करने के लिए यही चीज है, बस बढ़ते रहिए। इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये प्रभु का है, ये परमेश्वर है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे देखा, उसने कहा, दाऊद तू वो मनुष्य है जो मुझे हृदय से अच्छा लगता है। दाऊद लज्जित नहीं हुआ, वो प्रभु का दास था। उसने प्रभु से प्रेम किया और वो इतना प्रसन्न था, इतना आनंद से उतावला हो गया कि उसने मानव सम्मान के लिए भी नहीं सोचा। आप देखिए, जैसे कि मैंने अपने उपदेश में आज प्रातः कहा, हम इतने डरे हुए हैं कि हम चाहते हैं कि एक शाऊल हमें सिखाए। हम अपने धर्म विद्यालय से एक शाऊल चाहते हैं कि हमें बताए कि कैसे हमें अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए और हमें ये कैसे करना चाहिए। ये यर्दन के उस पार है, इस ओर पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। यहाँ आप उस गंदगी से बाहर हैं। यहाँ आप चिंता नहीं करते कि वे क्या सोचते हैं। यहाँ आप मरे हुए हैं और आपका जीवन मसीह में छिपा हुआ है और पवित्र आत्मा के द्वारा मोहरबंद है। आप चिंता नहीं करते, आप कनान में रह रहे हैं। आप अच्छा बीज उगा सकते हैं। आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। आप प्रतिज्ञा के देश से बंधे हुए हैं। मुझे स्मरण है कि भाई कॉलिंस उधर खड़े हुए हैं, लगभग 30 वर्ष पहले, जब ये आराधनालय बना नहीं था। ये एक छोटा तंबू था, यहाँ कोने में सभा चल रही थी, मेरी पहली सभा। मैं यही सुसमाचार प्रचार कर रहा था, यही चीज, मसीह का ना मिल सकने वाला खजाना, यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा, प्रत्येक वचन का सत्य होने का विश्वास करना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, दिव्य चंगाई, परमेश्वर की सामर्थ्य, जैसे कि अब मैं प्रचार करता हूँ। इसमें से एक भी इंच इधर उधर नहीं हुआ। परमेश्वर ने इसे मुझ पर बहुत प्रकट किया, इसलिए जैसा उसने इसे प्रकट किया, मैं तो बस इसे लाता रहा। जो कुछ भी उसने प्रकट किया, उसमें से कभी कम नहीं किया, वो बस इसमें और बढ़ाता रहा। जब लगभग 500 लोग वहाँ किनारे पर खड़े हुए गाना गा रहे थे, मैं वहाँ पर खड़ा था, यर्दन के तूफान भरे किनारे पर मैं खड़ा और कनान के सुंदर और आनंद भरे देश पर अपनी चाह भरी दृष्टि डाली, जहाँ मेरा अधिकार था। मैं कब स्वस्थ भरे किनारे पर पहुँचूंगा और सदा के लिए आशीषित हो जाऊंगा, कब पहुँच कर अपने पिता में होऊंगा और सदा का विश्राम। वे कब ये गाना आरंभ करेंगे कि मैं एक लड़के को लेकर नदी में यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा देने जा रहा था। मैंने कहा, स्वर्गीय पिता, जैसे कि मैं इस लड़के को इसके स्वीकार कर लेने के आधार पर आपके पास लाता हूँ, मैं स्वयं भी एक लड़का ही था, इसके चित्र घर पर हैं। मैंने कहा, जब मैं इसे पानी से बपतिस्मा देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के नाम के स्वीकार करने के आधार पर आप इसे पवित्र आत्मा से भरेंगे। और उसी समय के लगभग एक चक्रवात निकला और ये चक्कर मारता हुआ नीचे उतरा और वो चमकदार और भोर का तारा वहाँ खड़ा हुआ। वहाँ वो ज्योति खड़ी हुई, जिसे आप ठीक उस चित्र में देखते हैं, वहाँ वो खड़ी हुई। ये समस्त संसार में गई, कनाडा में और आसपास। उन्होंने कहा, स्थानीय बैप्टिस्ट सेवक पर एक रहस्यमय ज्योति प्रकट हुई जब वो बपतिस्मा दे रहा था। कुछ दिनों पहले जब डॉक्टर लमसा मेरे पास आए और इस विषय में कुछ भी नहीं जानते थे और एक चित्र को मेरे पास लाए, जो कि अभी भाई के पास है। क्या आपके पास वो चित्र है? क्या आपके पास बाइबल है? वहाँ रखी है, ये आपकी पुस्तक में है, ठीक है। परमेश्वर के पुराने प्राचीन हिब्रू चिन्ह का चित्र वहाँ था, ठीक वैसा ही जो कि अय्यूब के दिनों में था, इसके पहले की बाइबल लिखी गई। परमेश्वर अपने तीन गुणों में, तीन ईश्वर नहीं, एक परमेश्वर, तीन गुणों में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के वे तीन कार्यस्थल जिनमें परमेश्वर ने कार्य किया। तीन ईश्वर नहीं, तीन गुण, और ये वहाँ पर था जब वो महान पुरुष डॉक्टर लमसा बाइबल का अनुवाद, जब उसने उस प्रातः कहा, जब मैंने उसे ये बताया कि मैंने कहा वो चिन्ह क्या है, उसने कहा, ये इब्रानी में परमेश्वर का प्राचीन चिन्ह है, परमेश्वर, एक परमेश्वर, तीन गुणों में। मैंने कहा, जैसे कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वो रुक गए और उसने अपना कॉफी का कप नीचे रखा और मेरी ओर देखा। जीन, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम भी वहाँ पर थे। लियो, कहा कि क्या आप इसका विश्वास करते हैं? मैंने कहा, अपने संपूर्ण हृदय के साथ। उसने कहा, पिछली रात्रि आपकी सभा में खड़े हुए भाई बहनों, मैंने विचारों को जांचना परखना देखा। मैंने अमेरिका में पहले कभी नहीं देखा। मेरे देश में। उसने कहा ये अमेरिकन लोग बाइबल भी नहीं जानते, वे केवल अपना नामधारी जानते हैं, वे ये भी नहीं जानते कि कहां पर खड़े हुए हैं। कहा वे कुछ नहीं जानते। उसने कहा परंतु जब मैं वहां खड़ा था पिछली रात्रि, कहा मैंने कहा अब भाई जी मैं ये श्रद्धा के साथ कहता हूं और प्रेम और ऐसा। उसने कहा मैंने कहा ये तो एक भविष्यवक्ता होना चाहिए, परंतु जब मैं देखता हूं कि आप विश्वास करते हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीन ईश्वर नहीं थे, ये गुण थे, तब मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता हैं, या तो फिर आप पर इस प्रकार प्रकाशित नहीं होता। उसने कहा ये सिद्ध चिन्ह है। कहा मैंने कभी भी कहा आप वननेस नहीं हैं। मैंने कहा नहीं श्रीमान, मैं वननेस नहीं हूँ, मैं परमेश्वर में सर्वशक्तिमान होने का विश्वास करता हूँ और तीन गुण उसके तीन कार्यस्थल हैं कि परमेश्वर उनमें रहा। उसने कहा आपका हृदय आशीषित हो। उसने कहा किसी दिन आप इसके लिए अपने लहू को पृथ्वी पर उंडेलेंगे, परंतु कहा भविष्यवक्ता सदा उन्हीं के कारण मरते हैं। और मैंने कहा ऐसा ही हो यदि मेरे प्रभु को ये प्रसन्न करता है। लमसा बाइबल का अनुवाद, ओ ये इतना सत्य है। कितनी बार जैसा कि मैंने कलीसिया से कहा, जैसे सैमुएल ने कहा इसके पहले कि वे शाऊल को चुनते, इसके पहले आप बाहर जाकर अब किसी नामधारी को चुनते हैं और स्वयं को किसी प्रकार के धर्म में बांध लेते हो, क्यों नहीं आप पवित्र आत्मा को अपनी अगुवाई करने देते हैं? क्यों नहीं आप परमेश्वर को अपने मार्गदर्शन के लिए लेते हैं और उसे ही आपको आशीषित करने दें और अपने नामधारी को भूल जाएं? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी नामधारी कलीसिया से संबंधित ना रहें, आप जिसके साथ चाहे रहें, ये आप पर निर्भर करता है, परंतु मैं एक व्यक्ति के समान बता रहा हूं कि आप पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शन करने दें। आप बाइबल पढ़ें और बाइबल जो करने को कहे वो आप करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब मैंने आपको अधिक समय रोका है, मुझे अचरज होगा यदि यहाँ कोई प्रार्थना पंक्ति में प्रार्थना करवाने के लिए आना चाहता है। यदि वे हैं तो वे अपने हाथ उठा दें। केवल एक दो तीन, ठीक है, आप सब यहाँ आ जाएं और यदि आप चाहें तो इस समय यहाँ खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करेंगे और तब हम मैं आपको अभी छोड़ना नहीं चाहता। इसके पहले कि हम बंद करें, मैं आधिकारिक रूप में यहाँ कुछ करना चाहता हूँ। कितने गलतियों की पुस्तक के अध्ययन को पसंद करते हैं, ओ मेरा अर्थ इफिसियों। अब बुधवार रात्रि को हम मोहर में जाएंगे और तब अगले रविवार हम उपयुक्त स्थान में कलीसिया को रखने में जाएंगे। ओ यदि संभवतः हम आने वाले बुधवार रात्रि को उस पर जाएंगे। आप लोग जो यहाँ जेफ में हैं, कलीसिया को यथा स्थान जहाँ से वे हैं वहाँ पर रखना। प्रत्येक को हम कैसे लेपालकपन के द्वारा बुलाए गए, परमेश्वर ने हमें लेपालक पुत्र बनाया है, हम जन्म से पुत्र हैं, गोद लिए गए और पवित्र आत्मा के द्वारा यथा स्थान पर रखे गए। देखिए वे सारे के सारे इब्रानी थे जब उन्होंने नदी को पार किया, परंतु यहोशू ने भूमि को विभाजित किया और प्रत्येक को उसकी भूमि उनके जन्म के समय में जो उनकी माँ के मुंह से निकला उसके अनुसार दे दिया जहाँ पवित्र आत्मा ने उसे बताया। याकूब को देखिए जब वो मर रहा था, एक अंधा किया गया भविष्यवक्ता, अपने पैरों को पलंग पर समेटा, कहा तुम याकूब के पुत्रो यहाँ आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अंतिम दिनों में कहाँ पर होगे। ओ महिमा हो, ओ मैं जानता हूँ मैं परदेशी लग सकता हूँ, लोग परदेशी से लग सकते हैं, परंतु वो यदि आप जानते वो आश्वासन हृदय में जल रहा है। यहाँ आओ मैं तुम्हें बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम कहाँ होगे, और मैं वही वचन ले सकता हूँ और नक्शा लेकर जहाँ आज यहूदी बसे हुए हैं और आपको सिद्ध करके दिखा सकता हूँ कि वे ठीक वहीं पर हैं जहाँ याकूब ने कहा था कि वे अंत के दिनों में होंगे, और उन्होंने कभी नहीं किया। वे उस स्थान पर जब तक वापस नहीं आए थे मई 17, 1946 से, जिस रात्रि प्रभु का दूत मुझ पर प्रकट हुआ और मुझे इस उद्देश्य को बताया। और मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि जब वे नए देश में आए वे ठीक वहीं गए जहाँ याकूब ने कहा था कि वे वहाँ बसेंगे, और आज वे वहाँ पर बसे हुए हैं। ओ प्रभु, हम अपने घर के एक दिन और पास आ गए हैं। तुम प्रिय लोगों, आप बीमार हैं, आप वहाँ केवल खड़े होने के लिए वहाँ खड़े नहीं होते। मैं आपका भाई हूँ, मेरे पास परमेश्वर की ओर से बीमारों के प्रार्थना करने के लिए प्राधिकार है, ना कि जैसे कि मेरी जैसे कि चंगा करने की सामर्थ मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास प्रार्थना करने की सामर्थ है। जैसे कि इस प्रातः मैंने कहा कि दाऊद में कुछ नहीं था परंतु एक छोटी सी गोफन, परंतु उसने कहा मैं जानता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ के साथ ये क्या करेगी। समझे, आपके लिए मेरे पास छोटी सी प्रार्थना है कि उसे चढ़ाऊं और मेरे हाथ आपके ऊपर रखने के लिए, परंतु मैं जानता हूँ कि परमेश्वर में विश्वास क्या करेगा। ये दूसरों के लिए कर दिया गया है, ये आपके लिए करेगा। आप विश्वास करते हैं जैसे कि आपने अपने कदमों को ऊपर रखा है उस स्थान के और समीप। अब मुझे अचरज है कि इसे इतना योग्य बनाऊं यदि मैं भाई से यहाँ आने के लिए कहूँ और उन्हें तेल से अभिषेक करें। भाई नेविल, क्या आप करेंगे? मैं कलीसिया से कहूंगा यदि आप लोग अपने सिर प्रार्थना में झुकाएं। अब स्मरण रखें, पिछले सप्ताह जब मैं उसी पुराने अरण के तेल से इतना बीमार था, मैं कुछ भी देता यदि कोई आकर मेरे सिर पर हाथों को रखता, यदि कोई मेरे पास आ सकता होता कि परमेश्वर ने आशीष और सहायता की होती, तो मैं इसकी बहुत सराहना करता। अब आप सब ऐसा ही अनुभव करते हैं जैसे मैंने तब किया था। अब आप अनुभव करते हैं, आप मुझसे वैसे ही चाहते हैं जैसे मैंने तब चाहा था कि कोई मेरे लिए करे। परमेश्वर ना करे कि मैं कभी किसी कार्य से जी चुराऊं। मुझे सदा करने दें, चाहे मैं थका हुआ हूं, चाहे मैं श्रमित हूं, चाहे मैं कठिनता से एक दूसरा पैर चला सकूं, मुझे जाने दें, क्योंकि मैं आप में से प्रत्येक से फिर से वहां उस देश में मिलने वाला हूं। तब आप बूढ़ी महिलाएं और बूढ़े लोग, थके हुए सफेद बाल और गिरते हुए और गुलाब की खिली कली के खिलने के बाद जब पंखुड़ियां गिर रही होती हैं उसके समान टूटे हुए से, आप बस टूटने जा रहे हैं, क्या नहीं? ये ठीक बात है। बस केवल एक बात के लिए एक साथ रहना चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए चमकें। इसलिए जब शत्रु ने आपको पकड़ा और भाग गया, मैं परमेश्वर की गोफन के साथ आ रहा हूँ, विश्वास के साथ, उस वरदान के साथ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। यहाँ जो मैंने कहा ताकि आप इसे समझ जाएंगे, मैंने कहा यदि पतरस अंदर आ जाए या उनमें से कुछ, ये न कहें आपको मेरे लिए प्रार्थना नहीं करनी है। केवल इस प्रकार अंदर से आए और कहें जैसे ये महिलाएं कहती हैं, क्या आप अमुक अमुक हैं? आपका नाम क्या है? बहन हावर्ड। कहती हैं आप बहन हावर्ड हैं। बहन हावर्ड, आप विश्वासी हैं? क्या विश्वास करती हैं? क्या विश्वासी हैं? तो फिर आप देखिए सारे छुटकारे की आशीष कि आपके पास अधिकार है। तब बहन, मैं कहूंगा बहन हावर्ड, सब कुछ ठीक हो जाएगा और चली जाएं। ओ कैसे, मैंने कहा मैं चिल्लाऊंगा, मैं चीखूंगा, मैं कहूंगा प्रभु ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। और मैंने सोचा कि भाई लोग सोचते हैं वही बात जब मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आता हूँ, इसलिए ये आप देखिए मेरा क्या अर्थ है। बहुत सी बार मैं खड़ा हुआ और लोगों को लेकर कहा, ओ बहुमूल्य बहन, क्या आप इसका विश्वास करेंगी? ओ आप इसका विश्वास करेंगे? प्रभु, ओ परमेश्वर, इनसे इनका विश्वास करवा दे, ये इसका विश्वास कर लें। ओ कृपया, क्या आप अब इसका विश्वास करेंगे? ये वो नहीं है। मैं वहाँ से निकल गया, मैं उसके पास से निकल गया। मैं केवल इतना कहता हूँ, बहन हावर्ड, आप एक विश्वासी हैं? हाँ मैं हूँ। ठीक है बहन हावर्ड, यदि आप विश्वासी हैं तो आप जो परमेश्वर के पास हैं उस सब की वारिस है, और उसका हाथ लेता हूँ। देखिए मैं इसका विश्वास करता हूँ। मैं बहन हावर्ड पर अपना हाथ रखने के द्वारा बहन से संपर्क बनाता हूँ। यीशु ने कभी नहीं कहा कि उनके लिए प्रार्थना करो, उसने कहा केवल उन पर हाथ रखो, यही है, तब वो चंगी हो गई है। वो ये कह सकती है तब बातें ठीक हो जाएंगी, बहन हावर्ड, तब आप घर जा सकती हैं और चंगी हो जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप बहन, बहन हैप्टन, आप विश्वासी हैं क्या? आप नहीं हैं क्या? आप उन सब चीजों के वारिस हैं जो उसके पास है? परमेश्वर आपके साथ हो बहन हैप्टन, आमीन। आप घर जाएं और अब चंगी रहें, यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया।
Praise the Lord. God will give you. Yes, sir. Yes, sir. Hallelujah.
May the Lord God give you, Jew, exactly what you ask.
And in Jesus'
name. I will be.
Praise our God.
You are a believer. I know you. This is your husband. He's the one I prayed for over the phone that day. I always remember that.
Amen.
Could go to the meeting and tell us to come to the meeting, and the Lord would heal and send me to the meeting.
Amen.
The prophecy, you stand for someone else. What a Christian thing it is, sister. See, he was in prophecy also, and he stood for all of us. You're a believer and have a right to everything that God promised.
Yes.
I'm his servant. And by the name of Jesus Christ, I give you what you ask.
Amen. Praise the Lord.
My brother Bill, God bless you. Been all so good to you. You're a believer, I know you are. I believe that God will give you everything you ask for you are a believer. That's his servant to you, my brother. In the name of Jesus Christ, I give you the desire of your heart. In you, Lord. Go
ahead
and receive it.
Amen.
Praise the Lord. Sister Bruce, I know you. The little nurse at my back knew you. She used to be down there in the Motel J. J. Quinn J. or something like that. You stand for others. Watch your desire for the next Father. For yourself tonight. Then the enemy has jerked you beyond the doctor's reach. But I'm coming after you. With a slingshot. And in the name of Jesus Christ, I direct the slingshot at the arrow.
Thank you, Lord.
And bring you back to God. Give that to me through Jesus Christ's name. Amen.
Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus.
Do you believe him? You're hurting you in your side, low and on your left side. Do you believe that God will give it to you, sir?
Yeah.
And it's his servant. Lord, this hand perhaps has done a many hard day's work.
Yes.
Come here for a purpose, something to do. Give it. The desire of his heart, Father, as I pray in Jesus' name that you will. Amen.
Amen.
No doubt that hurting will stop you. You hurt me down there and you'll be all right. God bless you.
Brother. Amen.
Thank you.
You are a believer.
I am.
You're a believer. And you're heir to all these blessings.
I know. And I believe in your prayers, Brother Branham. I believe that God will heal me. I believe that he answers your prayers.
Thank you. Father, I bring this, my sister, into the line of
God. Thank you, Jesus.
Into the center of the power. And I bring her back to you from the enemy's clutch in the name of Jesus Christ.
Thank you, Jesus. Amen.
Thank you, Jesus. That's just the way it will be. One operation. Oh Lord, as this young woman stands here, young in the bloom of youth, I pray for her. And a lung that would have to be taken out and should stoop the rest of her life. You are our Father.
Amen.
Nine the fire of prayer right at her. Lord, right straight to that moment.
Amen.
I send this prayer in the name of Jesus Christ. May it strike that lung.
Amen.
In the name of Jesus
Christ. Hallelujah.
Amen.
I believe it. Thank you, Jesus.
Your sister dear. Back of your head, drawing pain. You are a believer. and an heir to all God's blessings. Sister Bruce.
Thank you,
Jesus. Lord, I bring her to you with this little sling that you give me. As you give David a sling to watch his father's sheep. And if an enemy coming after the sheep, he wasn't afraid. He grabbed up that little sling and went right after lions and bears. And he brought the sheep back. This is a prayer of faith. You told me if I get the people to believe and be sincere, I bring Sister Dirk back tonight. I snatch her from the hands of the enemy. She's your sheep. I'll bring her back to the Father's presence.
Jesus.
In the name of Jesus Christ. Amen. Sister Lona. High blood pressure. And you're a believer, are you, Sister Lona? I heir to all the blessings. Then, Father God, I aim this prayer tonight as from the sling of God for Sister Lona's high blood pressure. May the next time the physician takes the blood pressure, may he look at her and say, it's normal now. She'll know what it is. In the name of Jesus Christ, I give it to her.
Amen.
Yes. I wish I had my danger tonight. I will for yours. I understand.
Man.
Heavenly Father, the man that sired this boy, that is here on earth tonight because of him, and his own son desires that his father will be brought back.
Hey.
We out there in the world of sin, alcoholic. Oh Lord, I send this prayer with faith and strength and with all that I can throw it.
Yeah.
This little pebble.
Hey.
In the name of the Lord Jesus, yeah. I sling it at that devil that's
got
that thing caught in her.
Amen.
And he comes safely to the fold in Jesus' name. Amen.
Thank you, Jesus. Blessed be his name. Yes.
You have a desire to receive. You want to come into the land where all the promises are.
Yes, Jesus.
Now, Lord, this boy is just across the river, camped on the other side, and Jordan is swelling. And there's no way for him to cross except you make a way like you did for Joshua.
Amen.
For Israel. And Father, I am asking you as your servant, let our precious brother, oh God, let him enter into this promised land, this promise that on the other side is, I was carried the other night. May I have the privilege of grabbing him and throwing my arms around that other land, saying, my precious brother, grant it, Lord, may he receive the promise of God, the Holy Ghost. Amen.
Thank you, Jesus.
Oh, Lord, to this my gracious brother,
thank you, Jesus.
This hand has been kind to me and has good things for me that untold of. He believes and has faith. And now an enemy tries to grab this, my friend, sugar. And he thinks that he can grab this boy. I come after
him. Yes, glory.
I'm coming to bring back your own, Lord.
Yeah.
I'm slinging this rock with a zero faith. In the name of Jesus Christ, I strike that sugar by me.
Yes,
bring back your own sheep to the fold, Father. In the name of Jesus.
Amen. Amen. Bless him, Lord.
Kind of doctor says is the thing that kills. Each pound overweight takes a year off. To the insurance company. And she wants to live to the honor and praise of God.
Amen.
And there's no doctor can do this, Father God. It's just in your hand. And Sister Bell has been very faithful. And she's been kind and considered and tried.
Oh, amen. Bless her.
She's went through many deep trials. I come far tonight, Lord. I've come to meet that enemy, Lord. I aim with all the accuracy that I can aim with. In the name of Jesus Christ, I hurl that stone of faith at this enemy that's got her. May it scatter him and run him away from her. And she'll be able to be restored back to the shady green pastures.
Yes,
and
amen.
The still waters through Jesus Christ. Amen.
Thank you, Jesus.
She'll be, Sister Bell, just going out.
Brother Ben, I love the Lord better every day I live, and I've been coming here 20 years to this place, and I've been healing just nearly everything that ever got the matter with me. You remember all the things I've been up, and He's blessed me so much, and I love Him better every day of my life. I know I'm with, right with the Lord. If this ain't the Holy Ghost I've got, I'm still on the altar for everything He's got for me. And I'm going to die on the altar. That's what I want to do. And I'm dying on the altar for Jesus. And I'll tell you what I want you to do. You don't know, it took His whole family in with Him. And I want my whole family. You know, I want my loved ones saved.
Your children.
And my children.
Yes, sir.
Well, you know all that. You prayed for it.
We are all acquainted with Sister Spencer. And know that how her and Brother Jeff down through the rough weather's come down through the church. And I cross over the other side. It won't be toddling along like this. It'll be young. Brother Jeff, if I just only say, you know, that you all know how, just across the little shadow. You go back to that lovely young girl again, Brother Jeff, to the young boy. God promised you. Now look, I want to give you just a little teeny bit of teaching. It's your last one here. I want to give, because I know this year little boy, Charlie, he wasn't be prayed for. I want to say this one thing. Did you ever read in the scripture where the Bible said this? Paul told the Roman centurion, can you hear me all right? Told the Romans when he pulled his sword to kill himself up at Philippi when he was in jail. And the earthquake shut the jail in. He said, believe on the Lord Jesus Christ, and thy house shall be saved. Did you ever hear that? Thy and thy house.
Yes.
Now look, if you have faith enough for salvation for yourself, can't you also have faith enough for your house?
Amen.
God is someone to do. And Lord, I pray for Sister Spencer and Brother Spencer tonight that every child, them and their children, will all be in that glorious, happy land there where there will be no sickness or no old age, no sorrow or disappointment. And all this little life here will fade into a nightmare that's passed by. May they receive this, and may all of her children and her husband, all of her loved ones, and all that love her and all that she loves, may they be there with her. In Jesus' name.
Amen.
Thank you.
God bless you.
But you're getting broke down, Daddy. But I still do all the cooking, washing, and ironing to keep out.
Just like the road is falling apart.
Yes. I'm so tired all the time. They tell me, I have no mother, my stepmother lives in my ear. Oh, how you feel when you get old a long time ago? She said, well, Mary, you'll be tired all the time. I'm tired.
Well, you're just ready to go to rest.
I'm just tired all the time. I need rest.
Yes, ma'am.
And I want to rest to the Lord. I love Him better everything I need.
Just keep your faith right in Him, Sister Spencer. You'll cross over.
I'm going to die on the
Emma.
Just as sure as I stand here this way with you tonight, Sister Spencer, by His grace, I'll see you and Jess across the border with us. Young and old, you all be running home, my brother. Yes. I'll see you.
Amen.
Father God, this girl will have a breakdown, and she's out of reach of us. There's only trail of hindrance. But I've come for her tonight. I come to you, Father. I come asking you to direct the shot that I provide.
Jesus.
May it be exactly zero of the crosshairs on the back. May this prayer in the name of Jesus Christ strike that nervousness and tear it to pieces. Bring back those sheep of God's pasture. It just has to be.
Hallelujah.
God of heaven, grant that her six children, that she desires to be saved. She's heard that testimony of Brother Dalton, his lovely daughters. She desires her six children, Father. May she have them. May they be her in that land where they're
Amen.
Safely protected and sheltered by the blood of Jesus Christ. Amen. May you have him, sister, my prayer. There's nothing hardly can help it. They give them a little stuff like a or something like an acetylene. It's a cortisone, they call it. That kills you on them. It carries your blood. So. But look, see, the arthritis is like the lion to grab the sheep. And run away. Now, what will a little slingshot do? Ooh, my. There's a big roaring lion of a lamb. And he loves the lamb, so he's run off with the lamb. But David took the slingshot and went after
him. Amen.
See, now watch. He has five rocks. F-A-I-T-H. Himself. I-N. The sling was in his hand. J-N-S-U-S.
Wow.
He's a dead shot. Something has to happen. Let's go after that arthritis tonight. Father's prayer. May God give us.
Amen. Jesus.
She wants to be that guy's name?
No, she didn't say it.
You wanted to be that guy. Thank you, sister. Not because of that's what it is, because if that was in the Bible for Father, Son, and Holy Ghost, I believe that. I'd stay right with it. I wouldn't want to be any different. I'm going to be responsible for that. Just. Now, God said just the way that says it. Not to be different, but to be honest. Now, Father, we come for her love.
Yes, Jesus.
It's got arthritis, and here she wants her to be baptized in the name of the Lord Jesus. For that is the entrance. That's the open gate. That's where Joshua opened up one path that crossed over into the promised land. There wasn't two or three places opened up. There was just one.
Yes.
Peter, on the day of Pentecost, when the church was first inaugurated, opened up a path that repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ.
Yes, amen.
Never did they vary from that same path. Each one crossed into the promised land. Some of them were trying to get across way down at another ford. And Paul said to them, unto what was you baptized? Where are you trying to cross at? And they said, down here where John was. He said, well, John only pointed to the time and the place. And then when they heard this, they were baptized at the right ford. And they went across. And we said, the Holy Spirit coming. Granted to our sister and her loved one in the name of Jesus Christ.
Amen.
Brother Lyon?
Well, he really fights me.
Come on. Come
on. You remember up there when you I confess to me, that's all right.
Yes.
That's wonderful.
It is.
Yes.
So
that
division is
in a choir.
Is it over now?
Yes, it is.
God bless you. You're on the road to the promised land. How many of you remembers of just before this ministry was confirmed to me and me being fishing with a man one day down to a river, a lake, and I was catching little fishes and the Holy Spirit came up on me. There was this man is a Jehovah Witness. Was. His brother's here somewhere, Banks Woods. He's in here somewhere, which is my neighbor. This is Lon. And these people were Jehovah Witness.
Yeah.
And they said one day when we was fishing down there after this boy got converted, I told him there was something in his life, Mark, what taking place and all about it, which he just now told me, and he just now got it out of his life. Now, that's right, whatever it was. It's exactly right. His father was the one that was a reader. His dad didn't read it. And he and his wife both was baptized, Jehovah's Witnesses, in the name of Jesus Christ. Here in the pool. And this man was sitting by me, my brother. Banks, where are you? Is he inside?
Right back in the corner.
Back in the corner, yes. And we were fishing. And brother, my little boy had killed, I thought he killed a kitten a few days before. That little old mother cat had a bunch of little kittens and he picked it up and dropped it. And I thought, and I said, the Lord is going to raise a little life the day before. Is that right, Mom? Setting up in a cove. And I said, that's thus saith the Lord. And we fished all night. It caught nothing. The next morning, we were fishing back in a little cove for some bluegill, that small fish. And Brother Lyle had a big pole, and he let a little bluegill swallow it, the big hook he had. So when he pulled it out, the little string was all the way down, the big hook in the little bluegill's belly. And when he pulled it out, he just had to pull the entrails and everything else out of the little bluegill gill. I just pulled it all out because the big hook had got caught down in the fish's belly. And when he did, he threw it out on the water and he just quivered four or five times and that was it because his entrails and gills was hanging out of his mouth. And he floated around there for about a half hour. Floated back up into the bushes and I was sitting there fishing. And all of a sudden the Holy Spirit comes. Said, speak to that fish. I said, little fishy, Jesus Christ gives you your life again. And that little fish laying dead on the water, turned over on his side and went, out into the water. Brother Lyle and Brother Woods were sitting present. Brother Lyle said, Brother Brandon, that meant for me because I said to the little, I can put what you said. He said, when he pulled the entrails out of him, he threw him out there, he said, you shot your last one. It was like that. So God, he said, it meant me. And I said, no, Brother Lyle, that wasn't it. Brother Banks back there said, how many people in this world, how many thousands would love to be standing where we're standing right now to see the power of God come down and perform something like that? In other words, like I believe we all felt like Peter did, it's good to be here. Let's build three tabernacles. That's right. Now, Brother Lyle, you're not into the Holy Spirit now. You've left Egypt. The garlic pots and the filth of the world is left behind. Yeah. You're standing down on the Jordan bank now, just across Yonah. May God take you over.
Yes.
Almighty God, here's your trophy. He sure was in an awful fix, Lord. But my heart went for him. Our prayers just struck the very killing blow yonder. The very thing that held him has gone from him. It's been smashed. And now he's walking down to the Jordan. Take him to the promised land. Lord, and seal him among the people. But on that glorious day when we shall meet yonder, may I feel the embrace of his arms screaming, my precious brother.
Amen.
I can hold him. Bring Banks along with him, Lord, will you? Papa, Mama, and all of them. Sister, and all that great family.
Yes.
May we all meet under, Lord. May every one of them be filled with the Holy Ghost. I pray in Jesus' name. Amen. You will receive it, brother. God bless you, brother. Yes, brother. There's someone dying on a long distance call, and I'll turn the service to Brother Neville. Amen.
Great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Just Dave, you want to know if we're
Amen. So we sent a rock of faith. There's a woman from there. So I sent prayer after him. In the name of Jesus Christ. You lay him for a while. This is still open?
Yes.
Can I have your attention? Well, there's a lot of evangelists. A preacher up in Indiana was preaching. Dropped down in the pulpit just about an hour ago. While he was preaching, fell forward and died in the pulpit. A noted evangelist preaching up here in Indiana
The pastor just called me. He died while preaching under the anointing of the Spirit. Fell forward, his eyes set, his respiration left him. He's pronounced dead. Been laying dead for an hour. And something told him to call the church and have me to pray. So I sent prayer to bring him back in the name of the Lord Jesus.
Amen.
May you join with me by faith that it won't miss the target.
Amen.
And catch it and bring it back. Thank you.
God
be with you. I'll see you Wednesday night. New people from Georgia and around. Bye-bye.
God be with you. Brother Patrick. We got some fire seats lined up. Are you having any bums and seats?
Not bad. I was
praying. God, I would make some righteous decisions. I want to hear that God is willing for this guy to reach out. I want to hear that God is willing for this guy to reach out.
I'm listening to him. I'm trying to see how he is. And I look at him.
Enjoy being with you and worshiping with you too.
I know that someday I think we might find somebody.